जब भगवान रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर देते हैं, तो अर्जुन वहाँ पे अपने सारे रिलेटिव्स को देख के और सारे सैनिकों को देख के मोहित हो जाता है और इस तरीके से युद्ध न करने के 5 कारण बताता है। उन 5 कारणों में हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहला कारण था दया, दूसरा कारण था भोग, तीसरा पाप, चौथा सामाजिक कारण और 5वां कारण था अर्जुन का मोह। तो जब कोई इस प्रकार से इस स्थिति में आ जाता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, तब एक सोल्यूशन है कि व्यक्ति को एक गुरु की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति गुरु के शरण में जाता है तो गुरु ही उसको जो है उस स्तर से ऊपर लेके आ सकते हैं। तो इसलिए हमने डिस्कस किया था कि कृपण और ब्राह्मण 2 तरीके के लोग होते हैं। कृपण मतलब जो लोग शोक, मोह, भय इत्यादि से फंसे रहते हैं, उसमें देहात्म बुद्धि में अपने आप को रिलेट करते हैं और उनको कोई जिज्ञासा नहीं होती जन्म मृत्यु की, ना वो जानना चाहते हैं कि इस मृत्यु के बाद क्या होगा, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, इसके बारे में वो चिंता नहीं करते, वो परेशान नहीं होते, वो जस्ट जीना चाहते हैं, इस कैसे भी जी जाएं इस संसार में। तो इसका अर्थ यही है जैसे कि किसी व्यक्ति को मर्सिडीज कार मिले और उस मर्सिडीज कार का उपयोग वो खेती करने में, खेत की जुताई करने में लगा दे। तो जिस प्रकार से मर्सिडीज कार वो वास्तव में खेती या जुताई करने के लिए नहीं बनी है, बल्कि वो सैर करने के लिए बनी, उसमें सवारी करने के लिए बनी है, उसका यूज इस तरीके से नहीं किया जा सकता, वैसे ही मनुष्य शरीर का उपयोग जो है कुत्ते बिल्लियों की तरह नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका लक्ष्य जो है उच्च होना चाहिए, इसका लक्ष्य उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसका उपयोग होना चाहिए। तो हम अपनी बुद्धि के द्वारा तत्व जिज्ञासा कर सकते हैं, हाँ, कि ये कष्ट हमको क्यों मिल रहे हैं, जन्म क्यों लेना पड़ रहा है बार बार, मृत्यु क्यों हो रही है बार बार, बुढ़ापा क्यों हो रहा है, बीमारियां क्यों हो रही हैं मुझको, क्यों मुझे अधिदैविक, अधिभौतिक और अध्यात्मिक क्लेश मिल रहे हैं। हाँ, तो जो ये जानना चाहता है वो है ब्राह्मण, और जो नहीं जानना चाहता है, जस्ट जीना चाहता है, जी के मरना चाहता है, उसको बोलते हैं कृपण। तो जीवन का लक्ष्य क्या है ये हमें पता होना चाहिए, बिना इसके हम जीवन ऐसे ही नहीं जी सकते। जैसे कि मान लीजिए आप ओला या उबर करते हैं, कार बुक करते हैं कहीं जाने के लिए, तो वो भी आपसे पूछते हैं आपका लक्ष्य क्या है, कहाँ उतरना, कहाँ है आपको, तो जब तक आप वो नहीं बताएंगे तब तक वो भी आपको नहीं पहुंचा सकती उस जगह पे। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कौमारेत आचरेत प्राज्ञो, कुमार अवस्था से यानी 5 साल की अवस्था से व्यक्ति को जिज्ञासा करनी शुरू कर देनी चाहिए, ये कष्ट क्यों मिल रहे हैं मुझे, क्यों क्यों मेरी बॉडी को इतने सारे कष्ट मिल रहे हैं, क्यों बार बार जो है मैं नहीं चाहता हूं फिर भी दुख मुझे मिल रहे हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सारी चीजें जो है व्यक्ति को डिस्कस करना शुरू कर देना चाहिए 5 वर्ष की अवस्था से। कोई बात नहीं, जब जगे तब सवेरा, अभी भी अगर हमारी हम इस स्थिति में हैं, यहां तक कि भगवान तो कहते हैं अगर कि जीवन की अंतिम अवस्था में भी कोई इसको प्राप्त कर लेता है तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम उस अवस्था में नहीं, अभी पहले ही इसके बारे में हम जान सकते हैं, तो जानने का प्रयास करना चाहिए। अब यहां पर अर्जुन की बात करते हैं, अर्जुन भगवान कृष्ण के बिल्कुल पास में है, बिल्कुल मतलब रथ पे 2 फीट की दूरी पे बैठा हुआ है अर्जुन, और अर्जुन एक पायस व्यक्ति है, बहुत वो पुण्यवान व्यक्ति है, और इस स्थिति में जब उसको लग रहा है कि मैं क्या करूं, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भगवान को अपना गुरु बना लेता है। हाँ, उनको अप्रोच करता है और कहता है कि मुझे कृपया इस जो विस्मय, जो अभी सिचुएशन है, उससे मुझे बाहर निकालिए, कृपया आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। तो अभी तक भगवान अर्जुन से मित्रतापूर्वक बात कर रहे थे और अर्जुन के कहने पे भगवान ने उसको अपना शिष्य बना लिया। अभी इस स्थिति में अर्जुन शिष्य है और भगवान कृष्ण उसके गुरु हैं, और भगवान गुरु की तरह बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गुरु का कर्तव्य होता है कि अपने शिष्य को डांटे। जब शिष्य कुछ गलती करता है कुछ, तो शिष्य को डांटना जो है गुरु का कर्तव्य। तो जैसे ही भगवान गुरु बनते हैं, गुरु जिस तरीके से अर्जुन बोलता है कि आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूं, कृपया आप मुझे ज्ञान दीजिए, तो सबसे पहले भगवान उसको डांटना शुरू करते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम जो है इस सबसे ऊपर उठो, ये जो सुख दुख लाभ हानि, इस सबसे पहले ऊपर उठो, उसके बाद बात करो। तो सबसे पहला श्लोक जो भगवान बोलते हैं वो है अशोच्यानन्व शोचस्तम प्रज्ञावादांशवासिसे गतासून अगतासून शनानु सोचन्ति पंडिता, कि जो सोचने लायक चीजें हैं और जो ना सोचने लायक चीजें हैं, जो आने वाला है, जो जाने वाला है, जो रहने वाला है, जो नहीं रहने वाला है, इन सब के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है, उसके बारे में पंडित लोग जो है वो सोचते नहीं। और पहला ज्ञान जो भगवान देते हैं इसके बाद वो है आत्मा का ज्ञान। वो अर्जुन को बताते हैं, कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और जिस प्रकार से तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, इसी प्रकार से भीष्म हो गए, द्रोणाचार्य हो गए, ये सब भी आत्मा है, और आत्मा को कभी भी कोई मार नहीं सकता, किसी भी काल में उसके लिए मृत्यु है ही नहीं। जब वो मरती नहीं है, मरता कौन है? शरीर मरता है। शरीर मरने के बाद क्या होता है? आत्मा दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। तो तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना चाहिए। अगर तुम युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए, तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और अगर तुम जीत गए तो इस पृथ्वी का राज्य भोगोगे। हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महिम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। बोलते हैं कि अगर तुम्हारा हत यानी कि तुम मारे गए तो तुम स्वर्ग लोक को प्राप्त करोगे, और अगर जीत गए तो ये मही ये जो पृथ्वी है इसका भोग करोगे। इसलिए उठो और युद्ध का निश्चय करो, युद्ध तुमको करना है। अर्जुन से पूछते तुम क्यों चिंतित हो, क्यों चिंता कर रहे हो? अर्जुन कहता है कि मैं उनके उनके जो शरीर है उसको लेके आसक्त हूं, क्योंकि वो मेरे दादाजी, वो मेरे गुरु हैं, मैं उनसे आसक्त हूं। भगवान कहते हैं ये जो भीष्म है इनकी उम्र जो है अभी 450 साल की है, ये 450 साल बूढ़े हैं। अभी इनकी मृत्यु होगी तो उनको नया शरीर प्राप्त होगा, ये आज नहीं तो कल तो मरेंगे ही, आज तुम्हारे बाणों से नहीं मरेंगे, बाद में किसी और कारण से मरेंगे। हाँ, हो सकता है हार्ट अटैक आ जाए, हो सकता है कुछ और कारण से उनकी मृत्यु होगी, तो मृत्यु तो होनी निश्चित है। तुम क्यों चिंतित हो? तब तुम क्या बचा पाओगे उनको? नहीं, यहां पे अभी समय है तुम्हारे लिए कि तुम अभी धर्म की रक्षा कर सकते हो, क्योंकि ये धर्म युद्ध चल रहा है, इस धर्म युद्ध में तुम पार्टिसिपेट करके धर्म की रक्षा कर सकते हो, इसलिए तुम्हारा धर्म है कि अभी तुम युद्ध करो। भगवान ने अर्जुन को दो उसके ड्यूटीज के बारे में बताया, दो कर्तव्यों के बारे में बताया। एक कर्तव्य होता है भौतिक और एक होता है आध्यात्मिक कर्तव्य। भौतिक कर्तव्य, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का यह कर्तव्य है कि वो निष्काम भाव से अपना कार्य करे, अपनी ड्यूटी को निभाए, रिजल्ट की चिंता ना करे। हाँ, क्या करे? वो अपना कार्य करे। जब इस तरीके से कोई अपना कार्य करता है बिना रिजल्ट की चिंता किए, हाँ, या भगवान को रिजल्ट अर्पित करते हुए कोई कार्य करता है, तो धीरे 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 उसका चित्त जो है वो शुद्ध होता जाता है। और इस प्रकार से ये जो कर्तव्य बनाए गए हैं चारों वर्णाश्रम के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी, इन सबका एक ही लक्ष्य है, अपने अपने वर्णाश्रम में रहते हुए अपने चित्त की शुद्धि करना। तो मुख्य चीज यहां पे ये है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने रिजल्ट के प्रति, जो वो कार्य कर रहा है, जो ड्यूटी निभा रहा है, उससे क्या रिजल्ट मिलने वाला है, उससे आसक्त नहीं होना है। हाँ, वो केवल अपना ड्यूटी को निभाते रहना है। तो इस तरीके से भगवान ने अर्जुन को समझाने का प्रयास किया। सबसे पहले भगवान ने अर्जुन को कर्म कांड के बारे में बताया। देखिए, ये जो शब्द मैं यूज कर रहा हूं, कर्मकांड, कर्मयोग, बुद्धि योग, इन सबको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आगे भी कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए इनको क्लियर करते हुए चलिए। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि अपने शब्दों में, सरल शब्दों में आपको मैं इन शब्दों की व्याख्या करूं। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आते तो आप बाद में हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कर्मकांड का अर्थ होता है कि पुत्र प्राप्ति की इच्छा से, बारिश हो जाए इसकी इच्छा से, मुझे स्वर्ग प्राप्त हो जाए, ये जो भौतिक इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उसको कर्मकांड बोला जाता है। कोई यज्ञ किया जाता है, कोई पूजा की जाती है, कोई व्रत रखा जाता है, किस इच्छा से? भौतिक इच्छाओं से, कि ये करने से मुझे ये मिलेगा, तो उसको कर्मकांड बोला जाता है। तो कर्मकांड भगवान बताते हैं, ये कर्मकांड, जैसे कि युद्ध करो, युद्ध करने से क्या होगा तुमको? अगर तुम जीत जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, अगर हार जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, जीत जाओगे तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे, ये कर्मकांड है। भगवान अर्जुन से कहते हैं इससे भी अच्छा है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म क्या होता है? सकाम कर्म में यानी कि कर्मकांड में हम रिजल्ट की इच्छा रखते हैं कि ये मुझे मिले, पुत्र पैदा हो, या फिर फसल अच्छी हो, या फिर बारिश अच्छे से हो, या फिर मुझे स्वर्ग मिले, यानी कि इच्छाएं किसके लिए हैं? अपने लिए, रिजल्ट के प्रति हम आसक्त रहते हैं। लेकिन जो निष्काम कर्म है, निष्काम कर्म में व्यक्ति रिजल्ट के प्रति आसक्त नहीं रहता, वो इस रिजल्ट को भगवान को अर्पित कर देता है। जो कुछ भी हो मैं अपना कर्तव्य का पालन करूंगा, मैं अपनी ड्यूटी का पालन करूंगा, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, इसको बोलते हैं कर्मकांड। चूंकि भगवान ने ये हमको शरीर दिया हुआ है, तो ये शरीर से उत्पन्न होने वाले जो भी फल हैं हाँ, जो भी मैं कार्य कर रहा हूं उसका जो भी रिजल्ट मिलेगा वो सारा सारा रिजल्ट किसका है? भगवान कृष्ण का है। तो क्यों ना मैं इस रिजल्ट को भगवान कृष्ण को ही अर्पित कर दूं। इससे क्या होगा, ये कार्य करने से हमारा जो चित्त है, हमारे हमारे मन में जो गंदगी भरी हुई है, वो जो जो दोष भरे हुए हैं, वो सारे धीरे धीरे प्योरीफाई होते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं। उसके बाद भगवान बुद्ध योग के बारे में बताते हैं। पहले बताया कर्मकांड। कर्मकांड क्या है? कर्मकांड करना मतलब कुछ रिजल्ट प्राप्ति की इच्छा से कर्म करना। दूसरा है कर्मयोग, यानी कि जिसको बोला जाता है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म में क्या होता है, योग शब्द जब भी यूज होता है तो इसका अर्थ ही समझिए कि भगवान से संबंधित हो गया। तो कर्म योग, हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल जो है भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है कर्म योग या निष्काम कर्म योग। अभी भगवान बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति इन फलों को, जो भी वो कार्य कर रहा है, उन फलों को भगवान को अर्पित करता है, इसी को बुद्धि योग कहते हैं। यानी कि निष्काम कर्म योग और बुद्धि योग एक ही है, ठीक है? दूसरे दूसरे अध्याय में निष्काम कर्मयोग और बुद्धि योग एक ही है। और भगवान दूसरे अध्याय के 40 नंबर श्लोक में बोलते हैं, नेहा विक्रम नासु अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि इस पथ पर अगर कोई थोड़ी भी प्रगति करता है, बुद्धि योग की थोड़ी भी प्रगति करता है, तो वो उसकी प्रगति जो है खत्म नहीं होती, नेक्स्ट लाइफ में वो वहीं से शुरू करता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई कार्य 20% कर लिया, तो नेक्स्ट लाइफ में वो आध्यात्मिक कार्य होने के कारण आप 21 से शुरू करेंगे, 21 से शुरू करेंगे। तो इस तरीके से बुद्धि योग करने से, बुद्धि योग में कार्य करने से व्यक्ति क्या करता है, पहले तो उसके सारे अनर्थ खत्म हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो उसके हृदय में भरा हुआ है वो सारा का सारा खत्म हो जाता है, और मृत्यु होने पर वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है, भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त करता है। इसीलिए भगवान भगवद गीता में आगे बोलते हैं, यावान अर्थ उदपाने सर्वता संपलुत उदके, हाँ ब्राह्मणस्य विजानतः। जो ब्राह्मण है, हाँ ऐसे बताया जाता है, पहले गांव में क्या होता था, कई सारे पानी के स्रोत हुआ करते थे, छोटे छोटे कुएं हुआ करते थे। एक कुआं होता था पानी भरने, पानी पीने वाला पानी के लिए, एक होता था नहाने के लिए, एक होता था कपड़े धुलने के लिए। लेकिन अगर एक नदी है, यानी कि जहां पर पानी कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, बह रहा है, वो नदी जो है सारे उन कुओं का काम कर सकती है। तो वैसे ही ये जो भक्ति योग है, ये जो बुद्धि योग है, इसके द्वारा सारे हमारे जो कार्य है वो संपन्न हो सकते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं, अभी तुम वही करो जो मैं तुमसे बोल रहा हूं, इस प्रकार तुम सारे लाभों को प्राप्त करोगे। अभी अर्जुन पूछता है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तरीके से जीवन जीता है? तो अर्जुन उस व्यक्ति का नाम देता है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ आप देखेंगे 2.55, वहां से अर्जुन प्रश्न पूछता है, स्थित प्रज्ञ से कहा भाषा, उसकी भाषा क्या है? तो इस तरीके से अर्जुन चार प्रश्न पूछता है, कैसे वो बिहेव करता है, कैसे बैठता है, कैसे खड़ा होता है, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो अर्जुन उसके लक्षणों के बारे में जानना चाहता है, तो भगवान उसके उसके आंसर देते हैं, उसके क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि वो बिहेव कैसे कर रहा है। दुखेषु अनुद्विग्न मनः, जब उसके ऊपर दुख आता है तो भी शांत रहता है, जब सुख आता है तब भी संभाव रहता है, इस प्रकार से वो हमेशा संभाव रहता है। अर्जुन पूछता है, जब वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करता है, वो बैठता कैसे है? तो भगवान उसका आंसर देते हैं, जैसे एक कछुआ होता है, कछुआ जब उसको कुछ प्राप्त करना होता है, जब कोई संकट नहीं होता है तो वो अपने कवच से बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही कोई संकट देखता है वो अपने आप को कवच के अंदर कर लेता है। ठीक वैसे ही ये जो स्थित प्रज्ञ होता है, जहां पे इंद्रिय विषय भोग की वस्तुएं होती है वहां पे अपने आप को अंदर कर लेता है, कवच के अंदर कर लेता है, और जहां पे वहां भक्ति की बात होती है, भगवान की कथा सुनने की बात होती है, वहां पे अपने आप को बाहर निकाल लेता है। तो जो भी सही है भक्ति, जो भी सही है आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए, वो स्थित प्रज्ञ जो है उसको स्वीकार करता है, और जो भी आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए सही नहीं है उसको ये रिजेक्ट कर देता है। इस प्रकार से वो जो है जीता है। फिर प्रश्न पूछता है अर्जुन, तो भगवान उसके एग्जाम्पल में बताते हैं, कहते कि जैसे कि कोई सांप है, तो सांप जो है बहुत ठंडा होता है। कोई हो सकता है व्यक्ति बहुत गर्मी लग रही हो तो सांप को अपने गले में डाले ठंडक के लिए, लेकिन वो सांप कैसा है, जहरीला है, तो वो कभी भी काट सकता है। ठीक ऐसे ही इंद्रिय भोग की जो विषय वस्तुएं होती हैं वो भले ही कोई व्यक्ति को बहुत अच्छी लगती है, ठंडी दिखाई देती है, संसार में रहते हुए लगता है कि ये बहुत सुख मिलेगा, लेकिन वो कैसे हैं, उस सांप की तरह हैं जो बहुत जहरीला है और क्या करेगा, हमें अधोगति की ओर लेके जाएगा। तो इंद्रिय भोग भी वैसे ही है, लेकिन जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो क्या करता है, जिस तरीके से सांप के दांतों को निकाल दिया जाता है, जब सांप के दांतों को निकाल दिया जाता है तो विषहीन हो जाता है और उसका कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो काट भी लेता है, तो वैसे ही ये स्थित प्रज्ञ जो है अपनी इंद्रियों को उस प्रकार कर देता है, इंद्रिय भोग की वस्तुओं को वो नहीं, उनके तरफ नहीं जाता, बल्कि क्या करता है वो जो है उसी उन्हीं चीजों को ग्रहण करता है जो आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल है। तो इस तरीके से वो इस संसार में रहते हुए भी संसार से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनसे वो आसक्त नहीं होता, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो इस संसार में रहते हुए भी नहीं रहता है, ये कह सकते हैं। तो अर्जुन भगवान से पूछता है कि कैसे ऐसा संभव हो सकता है, तो भगवान उसका आंसर देते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। ये सबसे मुख्य बात भगवान बताते हैं, वो ऐसा तभी कर सकता है, क्यों, क्योंकि वो युक्त आसीत मत परह, मेरे पर ध्यान लगाता है, मुझ पर ध्यान लगाने की वजह से वो ऐसा कर पाने में सक्षम होता है, नहीं तो ऐसा कर पाना सक्षम कोई नहीं है, नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे ऊपर ध्यान लगाता है इसलिए इंद्रिय तृप्ति से वो बच जाता है। तो इस तरीके से भगवान बताते हैं। तो हम लोग भी जानते हैं जैसे गांधी जी के तीन मंदिर हुआ करते थे, तो गांधी जी के तीन मंदिर कैसे बोलते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, तो यह हालांकि सही है लेकिन पूर्ण नहीं है। अभी कोई व्यक्ति हो सकता है बुरा नहीं देखे, लेकिन देखने के लिए कुछ तो ना कुछ चाहिए, हो सकता है बुरा नहीं सुने लेकिन सुनने के लिए कुछ तो चाहिए, हो सकता है बुरा नहीं कुछ कहे लेकिन बोलने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो भगवान उसका आंसर यहां पे देते हैं, कहते हैं कि हाँ, बुरा मत देखो बल्कि क्या देखो, भगवान के दर्शन करो, भगवान का दर्शन करो। बुरा मत कहो तो क्या कहो, भगवान के बारे में कथा को कहो। बुरा मत सुनो तो क्या सुनो, भगवान की कथा सुनो, भगवत गीता सुनो, भागवत सुनो। बुरा मत खाओ, मीट मत खाओ, मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, क्या खाओ, भगवान का प्रसाद खाओ। तो इस तरीके से जो मन है वो शांत रहेगा, वो तुम्हें आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने देगा, वो परेशान नहीं करेगा, इस तरीके से तुम आगे बढ़ सकते हो। तो यहां तक हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की समरी सुनी। अभी इतने में अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कृपया प्रश्न पूछिए, दो चार मिनट में हम लोग प्रश्न लेते हैं और उसके उपरांत हम लोग थर्ड चैप्टर को शुरू करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए प्लीज। देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ और शायद मुझे आता भी होगा, लेकिन अगर आप लोग प्रश्न नहीं पूछेंगे तो आपको नहीं आएगा, क्योंकि ये भगवद गीता हम लोग जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं, जितना फास्ट पढ़ रहे हैं, वो तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप लोग खुद उसको जानने का प्रयास नहीं करेंगे। तो अगर प्रश्न हो तो कृपया जरूर से पूछिए। यस, हाँ पूछिए, प्रश्न पूछिए जी। आज का जो अध्याय हम लोग शुरू करेंगे उस अध्याय का नाम है कर्मयोग। तो कैसे कर्मकांड से कर्मयोग में हम जाएंगे वो हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज। यस, और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ हरे कृष्ण जी। जी समझ नहीं पा रहे हैं किस तरीके से करना, क्योंकि अभी क्या है, कर्म योग जो है, योग का अर्थ है कि हम भगवान से जुड़ रहे हैं। तो अभी हम अपने अपने प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए। हमें क्या फायदा होगा हमें वो नहीं देखना है, क्योंकि फायदा हो नुकसान हो किसका है, भगवान का है रिजल्ट। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कंपनी में नौकरी करता है, अब कंपनी घाटे में जाए या फायदे में जाए, अगर उस व्यक्ति को सैलरी मिल रही है 50,000 रुपये महीने की, तो 50,000 रुपये उसको मिलेगी, घाटा होगा या फायदा होगा किसका होगा, कंपनी का। हाँ, तो इसलिए अपने कर्मों को हमें भगवान को अर्पित कर देना है, उनके फलों को भगवान को अर्पित कर देना है। हमें बस अपनी ड्यूटी निभानी है एज ए पर्सन, हमको यहाँ पे ड्यूटी दी गई है, इस संसार में रहना है, परिवार को चलाना है, नौकरी करनी है, हम करेंगे, लेकिन उसको कैसे करेंगे, एज ए ड्यूटी। उससे आसक्त नहीं होंगे, ना उससे आसक्त होंगे ना उसके रिजल्ट से आसक्त, वो भगवान को अर्पित करते हुए करना है, जय तेरा तुझको अर्पण वाला कंसेप्ट करके करना है, तो हम इस संसार में रह पाएंगे। और कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, हाँ बोलिए। जी 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 ठीक है, ठीक है, अच्छा प्रश्न है आपका। जब भी हम इस संसार में रहते हुए किसी भी प्रकार का कर्म करते हैं, सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो हमारा लक्ष्य अगर भगवान को प्राप्त करना है, ठीक है, अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे लिए ये सकर्म भी खराब है, अपना भला चाहना भी सही नहीं है। अपना भला चाहना इन द सेंस अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहना, अपना भला यहाँ पे क्या है, अपनी इंद्रिय तृप्ति और कुछ नहीं है, तो वो भी हमारे लिए खराब है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करना है। भगवान को प्राप्त करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वो अच्छा है, भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए जो भी अगेंस्ट में है वो बुरा है, ये सिंपल फॉर्मूला है। तो इस भक्ति करने के लिए, ये हो गया उन लोगों के लिए जो कि जानते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। कई लोग हैं जो जीवन के लक्ष्य को नहीं जानते, वो क्या सोचते हैं, स्वर्ग है, नरक है और पृथ्वी है, हम अच्छा करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, बुरा करेंगे तो नरक जाएंगे, नहीं तो पृथ्वी पर रहेंगे। इस सोच वाले आदमी के लिए वो कैसे भी जिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर थोड़ा भी बुद्धिमान व्यक्ति है जो ये जानता है, वो जानने का प्रयास करता है, ये मुझे दुख क्यों मिल रहे हैं, क्या मैं इन दुखों से परमानेंट सुखी नहीं हो सकता, मैं इनसे दूर नहीं हो सकता, वो भगवान के धाम जाने का प्रयास करेगा। और जो भगवान के धाम जाने का प्रयास करेगा, उसके लिए ये इंद्रिय तृप्ति की जो चीजें हैं, सकर्म कर्म करना, कर्म कांड करना, ये उसके लिए अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के समान है। तो कभी भी कोई भी कार्य व्यक्ति कर रहा है इस मकसद के साथ कि वो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, उसमें क्या करना चाहिए, उसको और जो अन्य उसके एक्सपेक्टेशंस हैं और जो अन्य उसके रिजल्ट की आकांक्षाएं हैं, वो सारी भगवान को अर्पित कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। भगवान भगवद गीता में दूसरे अध्याय में ही 47 नंबर के श्लोक में बोलते हैं, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है पर तुम उसके फल के अधिकारी नहीं हो। तो फल जो है वो भगवान देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इस बात को अगर किसी व्यक्ति ने समझ लिया कि ये जो फल देने वाले कौन है, भगवान फल देने वाले हैं, हम अपने आप से फल प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं, कई लोग ऐसे हैं कई सालों तक तैयारी करते हैं वो आईएएस नहीं बन पाते, और कई ऐसे हैं जो पहले प्रयास में आईएएस बन जाते हैं। पढ़ाई भी वो ज़्यादा करते हैं, हो सकता है उन लोगों ने जो पहले से पढ़ रहे हैं उन लोगों ने पढ़ाई भी ज़्यादा किया हो, ज़्यादा समय भी दिया हो, लेकिन फिर भी हो सकता है उनको आता भी ज़्यादा हो, लेकिन चूंकि भगवान उनके साथ नहीं है, चूंकि भगवान ने उनको फल नहीं दिया, इसलिए वो उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। तो लक्ष्य जो जो देने वाले हैं वो भगवान है, रिजल्ट देने वाले कौन है, भगवान। हम ये नहीं कह सकते कि हमने ये किया हमको ये मिलना ही चाहिए, नहीं, रिजल्ट भगवान के हाथ में, और भगवान किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, उनको देना होगा तो देंगे, नहीं देना होगा तो नहीं देंगे। तो कभी भी आप यह मत समझिए मैंने कर्म किया है तो मुझे रिजल्ट मिलना ही चाहिए, मैं अधिकारी हो गया रिजल्ट पाने का, नहीं, आपने कर्म किया है आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, ऑल थिंग्स डिपेंड ऑन कृष्णा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान सिंपली, अभी आपको रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप रिजल्ट से आ सकते हैं, नहीं मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए मिलना चाहिए मिलना चाहिए, आप उससे आ सकते हैं तो क्या होगा, दुख मिलेगा आपको। इसलिए उससे क्या कहो, निरासक्त रहो, उससे अनासक्त रहो, और अपनी ड्यूटी को जस्ट निभाते चले जाइए। ड्यूटी निभाते जाएंगे तो क्या होगा, हम जो है अपना चित्त शुद्धि होता जाएगा और अंत समय में भगवान को प्राप्त कर जाएंगे। सिर्फ इतना करने से, अपनी ड्यूटी को निभाने मात्र से हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि हमारा चित्त धीरे धीरे शुद्ध होता चला जाएगा। तो इसलिए हमें कर्म योग करना चाहिए, अपने कर्मों के फल को भगवान को अर्पित करते हुए चलना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? चलिए, बहुत अच्छा, हम लोग अभी तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, एक्चुअली सारे चैप्टर्स ही भगवद गीता के इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी हमने देखा दूसरे अध्याय में भगवान ने किस प्रकार से गीता का सार अर्जुन को प्रदान किया। तो अर्जुन को भगवान ने कहा, एक तरफ युद्धाय कृत निश्चया, युद्ध करो, और दूसरी तरफ भगवान बोल रहे हैं स्थित प्रज्ञ बनो। हालांकि भगवान एक ही बात बोल रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, तुम अपने कर्मों को मुझे, कर्मों के फल को मुझे अर्पित करो। भगवान का कहने का एक ही चीज है, लेकिन अर्जुन जो है वो कंफ्यूज हो गया। अर्जुन को लगा कि मैं युद्ध करूं या सन्यासी बन जाऊं। एक तरफ भगवान कह रहे हैं युद्धाय कृत निश्चया, हाँ उठो और युद्ध करो, और दूसरी तरफ भगवान क्या बोल रहे हैं, अपने कर्मों के फलों को मुझे अर्पित करो, सन्यास ले लो। तो इसलिए अर्जुन पूछता है भगवान कृष्ण से, जय, पहला श्लोक तीसरे अध्याय का, जय सी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशवा। दूसरे प्रश्न में पूछता है, दूसरे श्लोक में, व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसि मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। हे केशव, आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ मानते हो, यानी बुद्धि योग को, आप मुझे युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो? आपके जो उपदेश हैं उससे मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अभी कृपया मुझे बताइए मेरे लिए सही क्या है। अभी भगवान अर्जुन को कंफ्यूज नहीं करना चाहते थे, भगवान ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन कंफ्यूज हो, हा? लेकिन फिर भी यहाँ पर अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो भगवान का, अर्जुन का सोचना यह है, बुद्धि योग मतलब स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, हाँ स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, वो जब इंद्र तृप्ति की चीजें आएंगी तो उनसे दूर हट जाएगा, जब इंद्र तृप्ति की चीजें नहीं होंगी, भक्ति की चीजें होंगी तो वो सामने रहेगा। लेकिन अर्जुन सोच रहा है, इंद्र तृप्ति, अभी मैं युद्ध करने जा रहा हूं, ये तो इंद्र तृप्ति है, युद्ध करूंगा, मैं युद्ध को जीतूंगा, मुझे इंद्र तृप्ति प्राप्त होगी। अर्जुन कहता है, कर्म योग मतलब युद्ध करना और बुद्धि योग मतलब सन्यासी बनना, क्या ऐसा है? आप मेरे को दोनों क्यों बता रहे हो, एक बताओ जो मेरे लिए सही हो। मुझे कर्म योग करना है यानी कि युद्ध करना है, या बुद्धि योग करना है यानी कि संन्यास ले लेना है और शांति से बैठना है जंगल में, कृपया मुझे दोनों में क्या सही है वो मुझे बताइए। तो अर्जुन को भगवान कंफ्यूज नहीं करना चाहते थे, अर्जुन को एक ही बात बता रहे हैं, वो ये है कि तुम्हें कर्म को त्यागना नहीं है बल्कि उसके रिजल्ट को त्यागना है। कर्म करना है वैसे ही कर्म करना है, लेकिन उसका जो लक्ष्य है, उसका जो फल है, वो मुझे अर्पित कर देना है। अर्जुन सोच रहा है कि इस युद्ध में सब लोग मार दिए जाएंगे, सब लोग मार दिए जाएंगे तो जब मैं युद्ध जीतूंगा तो कौन बोलेगा अरे वाह अर्जुन क्या तुमने युद्ध किया, हाँ और किसको मैं दिखाऊंगा कि मैंने देखो कितने अच्छे से युद्ध किया है। अर्जुन की जो सोच है यहाँ पे वो केवल मैं और मेरा को लेके है, वो केवल मैं और मेरा तक ही सोच रहा है। अर्जुन से भगवान क्या कह रहे हैं, तुम मेरे लिए युद्ध करो, अपने लिए युद्ध मत करो, डोंट वर्क फॉर योर सेल्फ, वर्क फॉर मी। तुम्हें उन लोगों को नहीं मारना है, तुम उन लोगों को इसलिए नहीं मार रहे हो क्योंकि वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, अगर वो रिश्तेदार नहीं होते तो तुम उनको मार देते। अभी तक तुमने कितनी बार मारा हुआ लोगों को, तुम्हारा दिमाग तुमसे ट्रिक खेल रहा है। इसलिए युद्ध करके भोगना और युद्ध छोड़ के चले जाना दोनों आपका मत ही है, दोनों आप अपने आप से ही अपने हिसाब से ये निकाल रहे हो कि मैं युद्ध करके भोग भोगूं या युद्ध छोड़ के चला जाऊं और जो है संन्यास ले लूं। भगवान अर्जुन से कहते हैं तुम अपने तुम्हारा जो 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 कार्य कर रहे हो उनका जो फल है वो मुझे अर्पित करो। तो भगवान अर्जुन से कहना चाह रहे थे कि मेरे लिए कार्य करो। मेरे लिए कार्य करने का मतलब क्या है, भगवान के लिए कार्य करने का मतलब क्या है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं हम केवल निमित्त हैं। निमित्त मतलब होता है हमारी जगह कोई और भी ले सकता है वो भी यही करेगा, पर इस मतलब ऐसा नहीं कि हम ही कर रहे हैं, हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। निमित्त का प्रॉपर डेफिनेशन कोई किसी को मालूम, निमित्त को हिंदी में और क्या बोलते हैं, माध्यम, यस माध्यम। हाँ तो अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि तुम माध्यम बनो मेरा, कर कौन रहा है, मैं कर रहा हूं, ये सोचो, ये मत सोचो कि तुम कर रहे हो बल्कि ये सोचो कि कृष्ण कर रहे हैं, इस तरीके से तुम जीवन को जीने का प्रयास करो। लेकिन अर्जुन ये बात समझ नहीं पाया तो अर्जुन को सबसे पहले भगवान ने कर्म कांड के बारे में बताया। हमने अभी शुरुआत में थोड़ा बताया भी, कर्मकांड मतलब मैं पास हो जाऊं, मेरा प्रमोशन हो जाए, शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, ये सब कर्मकांड है। इससे अच्छा ये अच्छा है, किन लोगों से अच्छा है, जो नास्तिक लोग हैं, जो भगवान पे और देवताओं पे विश्वास नहीं करते हैं उनसे ये अच्छा है। कोई अगर नास्तिक है तो उससे ये अच्छा व्यक्ति है जो कि किसी कार्य को करने के लिए कुछ सकाम कर्म की इच्छा करे, कुछ फल की इच्छा करे, ये अच्छा है। लेकिन इससे भी अच्छा कौन है, योगी, कर्म योगी जो है वो इससे अच्छा है। तो अगर कोई व्यक्ति शुद्ध नहीं है, जैसे कि अर्जुन, अर्जुन चाह रहा है कि वो संन्यास ले ले, अभी वो शुद्ध नहीं है, उसके अंदर की इच्छाएं खत्म नहीं हुई है, युद्ध करने की इच्छा है, स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा है, उसके अंदर यह इच्छा है कि मैं इस राज्य को भोगूं, और वो संन्यास ले लेगा तो बड़ी प्रॉब्लम है। मान लीजिए संन्यास लेना मतलब भिखारी बन जाना, भीख मांगना। मान लीजिए अर्जुन निकला, चलो मैं सन्यासी बन गया, और कटोरा लेकर निकला, चलो भिक्षा में दे, भिक्षा में दे, एक दो दरवाजे पे गया, किसी ने उसको बोला नहीं मिलेगी भिक्षा, भाग जाए यहां से, तो अर्जुन क्या करेगा, तलवार निकलेगा, उसका गला काट देगा, क्योंकि अभी वो शुद्ध नहीं हुआ है, उसके अंदर की इच्छाएं अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए वो बहुत खतरनाक है। पहले उन इच्छाओं को खत्म करे तभी कोई व्यक्ति संन्यास ले सकता है। लेकिन उन इच्छाओं को खत्म करने की जरूरत नहीं है, अपना जो भी स्वभाव है उस स्वभाव को भगवान की सेवा में लगा देना कर्मयोग। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य करते हुए उसके रिजल्ट को भगवान को अर्पित कर देना, यह कर्मयोग है, यही बुद्धि योग, यही भक्ति है। कई लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा मंदिरों के बाहर कई बार कुछ साधु लोग बैठे रहते हैं, वो भीख मांगते हैं, मंदिरों के बाहर बैठे रहते हैं, वो अपना अपना काम छोड़ के आए हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं और भीख मांग रहे हैं, और भीख मांगने के बाद जब उनको पैसे मिल भी जाते हैं तो क्या करते हैं, वो गांजा पीते हैं या कुछ और गलत कार्य करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या हुआ है, जैसे परजीवी होते हैं ना दूसरे व्यक्तियों पर जीवन जीने वाले, ये लोग वैसे व्यक्ति हैं, उनका कोई फायदा नहीं है। इसलिए भगवान छठे श्लोक में बोलते हैं कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मन सांस्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा समुच्यते। वो कर्म इंद्रियों को वश में करता है लेकिन उसका मन जो है इंद्रिय विषयों में भागता रहता है। हाँ मैं आपको स्लाइड दिखाता हूं, हाँ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? वेरी गुड। तो भगवान चार पांच और छह तीन श्लोकों में बताते हैं, पहली चीज बताते हैं कि देखो संन्यास लेने का अर्थ यह नहीं है कि कामों को छोड़ देना, कर्म को छोड़ देना। कर्म किए बिना कोई व्यक्ति एक सेकंड भी नहीं रह सकता। कार्यते है सम कर्म सर्व प्रकृति गुणे न ही कश्चित क्षण अपनी जातु तिष्ठ अकर्मकृत। बिना कर्म किए कोई व्यक्ति एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता है। उसके बाद भगवान बोलते हैं छह नंबर के श्लोक में कि जो कर्मेंद्रियों को वश में करता है लेकिन मन जो है उसका इंद्रिय विषयों में जाता रहता है। जैसे मान लीजिए अर्जुन अगर वो संन्यास ले लेगा, वो बात क्या करेगा? युद्ध की बात करेगा, क्योंकि उसका मन जो है वो इंद्रिय विषयों में गया हुआ है। युद्ध की बात करेगा, कैसे मैं जीत सकता था पर मैंने छोड़ दिया, राज्य होता तो ये होता। ऐसे ही जैसे ये जो है साधु है वो क्या कर रहे हैं, वो गांजा पी रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति करने की प्रयास है। हाँ, वो इंद्रिय तृप्ति करना चाह रहे हैं, वो उससे बच नहीं पाए हैं। दूसरी तरफ देख रहे हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं, वो फुटबॉल खेलना चाहते थे हाँ, लेकिन अभी उन्होंने क्या किया, नहीं चलो हमें संन्यास ले, संन्यास लेके भी क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ऐसे लोग हाँ वो क्या है, क्योंकि हम लोग जो हैं बिना कर्म किए नहीं रह सकते। तो अगर हम आध्यात्मिक कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें भौतिक कर्मों में हम फंस जाएंगे, वो हमें करना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं, आठ नंबर श्लोक, इसलिए क्या करो, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही कर्मणा शरीर यात्रा पिचा तेना प्रसिद्ध येद कर्मणा। ये जो है कर्म सन, अपने जो नियत कर्म है वो करते रहो, क्योंकि नियत कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। बिना कर्म किए तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। बिना कर्म किए कोई शरीर भी, अभी खाना तो पड़ेगा ना कुछ, तो खाने के लिए मुंह तक लाना तो पड़ेगा, वरना कैसे, ये भी कर्म है। इसलिए कर्म करना बंद नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति। तुम क्षत्रिय हो तुम्हें कर्म करना चाहिए, तुम चाह रहे हो ब्राह्मण का कर्म करना, नहीं हो सकता। अपना नियत कर्म करो, क्षत्रियों वाला कर्म करो। अभी अर्जुन के मन में डाउट था, मैं तो नियत कर्म करना चाहता हूं लेकिन नियत कर्म मेरा क्या है, युद्ध करना। युद्ध करने से क्या होगा, मुझे कई लोगों को मारना पड़ेगा, कई लोगों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। अर्जुन कहता है मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे कि मैं इन पापों से बच सकूं। तो भगवान उसको नौ नंबर के श्लोक में बताते हैं, विष्णु के लिए कर्म करो और कर्म बंधन से बचो। यज्ञार्था कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। किसके लिए कर्म करो, विष्णु के लिए कर्म करो। अभी तुम क्या सोच रहे हो, तुम मेरे लिए अपने लिए करने का प्रयास कर रहे हो, नहीं, यज्ञार्थ, विष्णु का एक नाम है यज्ञ, विष्णु के लिए कर्म करो। अन्य कर्म करोगे तो क्या है, लोकोयम कर्म बंधन, वो कर्म जो है बंधन का कारण बनेंगे, उनसे पाप लगेगा पुण्य लगेगा। इसलिए तदर्थम कर्म कौन्तेय, उनकी भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करो, उससे क्या होगा, मुक्त संग समाचर, तुम बंधन से हमेशा मुक्त रहोगे। तो यज्ञ जो है वो कौन है, विष्णु है, इसलिए विष्णु के लिए कार्य करो, भगवान का आदेश। तो वैदिक सभ्यता में लोग आहुति डालते थे यज्ञ कुंड में, डालते हैं यज्ञ कुंड में। तो जो यज्ञ कुंड होता है वो क्या है पता है, वो भगवान विष्णु का मुख है, भगवान विष्णु की जिह्वा है वो। तो अगर कोई व्यक्ति घी जौ और भी जो हवन सामग्री इत्यादि जो है वो डालता है और साथ साथ में भगवान के नाम जो है प्रॉपर रूप से उनकी चैंटिंग की जाती है, तो क्या होता है, वो भगवान विष्णु के पास पहुंचता है। जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ में जो भी आहुतियां डालते हैं वो भगवान विष्णु ग्रहण करते हैं, उनके पास पहुंचता है। अभी आजकल के लोग डाउट करते हैं, अरे भाई ये आप क्या कर रहे हैं, इतना घी क्यों वेस्ट कर रहे हैं, आग में जला रहे हैं इतना सारा घी, इतना सारा हवन सामग्री क्यों डाल रहे हैं, फल फ्रूट फल डाल रहे हैं, ये सारी चीजें क्यों डाल रहे हैं। उनको नहीं मालूम है, क्या नहीं मालूम है, आगे भगवान बताते हैं अन्नात भवन्ति भूतानि। आगे देखिए श्लोक संख्या 14, ये बाद में पढ़ते हैं। श्लोक संख्या 14 में भगवान कहते हैं अन्नात भवन्ति भूतानि परजन्यादन्य संभवा यज्ञात भवति परजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। जब कोई व्यक्ति यज्ञ करता है तो यज्ञ करने से क्या होता है, बारिश होती है। बारिश करने से क्या होता है, फसल उगती है। फसल उगने से क्या होता है, व्यक्ति को पोषण मिलता है। पोषण मिलने से क्या होता है, वो व्यक्ति जो है पोषण जिसको प्राप्त होता है हाँ वो बच्चों को जन्म देता है और वो जो बच्चे हैं वो पुनः यज्ञ करते हैं और इस तरीके से वो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस चक्र को बोला जाता है धर्म चक्र। यज्ञ किया, यज्ञ से बारिश हुई, बारिश से फसल हुई, फसल खाके व्यक्ति ने नरिशमेंट हुआ, पोषण हुआ, उससे संतान उत्पत्ति हुई और संतान उत्पत्ति से वो संतान जो है भविष्य में फिर से यज्ञ करें। ये चक्र है, इट इज अ साइकिल। तो उस साइकिल के द्वारा व्यक्ति जो है वो टिका रहता है। अभी जैसे एक कोई लड़का है, उसको घुटने में चोट लग गई, घाव हो गया, वो डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, मुझे कैसे क्या करना है बताइए। तो डॉक्टर ने कहा ये लो मेडिसिन, हाँ वो एक उन्होंने टेबलेट दिया। तो वो लड़का कह रहे क्या करना है, मुझे इसको खाना है या फिर इसको चूर्ण बना के जहाँ पे घाव है वहाँ पे लगाना है। तो डॉक्टर कह रहे नहीं इसको खा लो। अरे भाई मेरे को पैर में दर्द हो रहा है, पैर में घाव हुआ है, खाने से तो पेट में जाएगा, वो घुटने पे कैसे सही होगा। तो डॉक्टर बोलता तुमको जितना मैं बोल रहा हूँ ना उतना करो, जस्ट तुम उसको खा लो उससे देखो क्या होता है। और ये लड़का उसको खाता है और दो दिन बाद उसका घाव जो है सही हो जाता है। अभी ये उसको पता नहीं है कैसे हुआ, वो लड़का जो है उसको ज्ञान नहीं है इसलिए उसको पता नहीं है ये कैसे हुआ। लेकिन विधि क्या है, जो भगवान को इस तरीके से अर्पित करता है, यज्ञ के द्वारा अर्पित करता है, भगवान उसको ग्रहण करते हैं। तो आजकल लोग यज्ञ नहीं करते, साथ क्या करते हैं, इंद्रिय भोग करते हैं, मैं मेरा मेरी इंद्रियां, और इस तरीके से भगवान को पूर्ण रूप से भूल गए हैं, देवताओं को पूर्ण रूप से भूल गए हैं। इसीलिए बारिश सही से नहीं होती है। यहाँ तो ठीक है इस एरिया में होती है काफी जगह, लेकिन कई जगहों पे देखा जाता है बारिश जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं होती है। क्यों, कभी बिना टाइम के होगी, कभी ज्यादा होगी, कभी कम होगी। प्रकृति जो है वो लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि प्रकृति जो है वो देवताओं के अंडर में है, भगवान के अंडर में कार्य कर रही है, और भगवान को यहां से लोग प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, देवताओं को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। क्योंकि भगवान खुश नहीं है इसलिए प्रकृति जो है वो आपको दंड देगी। ये सिंपल सा मेथड है। यज्ञ करने से भगवान प्रसन्न होंगे और सारे देवता प्रसन्न होंगे। जब देवता सारे प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे, तो क्या होगा, अच्छी बारिश होगी। अच्छी बारिश होगी तो अन्न अच्छे से उगेगा और पूरा जो है जनता जो है वो सुखी रहेगी। तो अभी आप समझिए, एक अमीर व्यक्ति है, उसके दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे बाहर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। एक बच्चा जो है, एक लड़का जो है वो बहुत अच्छा है, वो कम पैसे खर्च करता है हाँ, और कम पैसे खर्च करता है और बहुत सही से पढ़ाई करता है। बाद में उसके पिताजी उसको बुलाते हैं और अपना जो बिजनेस है उसमें उसको जो है ले लेते हैं, वो उसमें अपने पिताजी की हेल्प करता है। दूसरा लड़का जो है वो क्या करता है, पढ़ाई भी सही से नहीं करता, वो क्या करता है पैसे भी वेस्ट करता है और हर बार ज्यादा से ज्यादा पैसे मंगाता रहता है। तो पिताजी क्या करते हैं, चल राजा तू खेती कर, चल के चल, उसको छोटे कार्य में लगा देते हैं। तो ये ज्यादा पैसे ले रहा है, गलत कार्य कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, चाय पी रहा है, सब कर रहा है। तो उसी तरीके से इस संसार में भी दो तरीके के पुत्र हैं भगवान के। एक है जो यज्ञ करते हैं जैसा पिताजी यानी कि भगवान बोले उनके अनुसार जीते हैं, और दूसरे तरीके के होते हैं जो भगवान के अनुसार नहीं जीते, वो क्या करते हैं, वो कर्म बंधन में फंस जाते हैं। जो भगवान के लिए यज्ञ नहीं करते हैं वो कर्म बंधन में फंस जाते हैं। अब देखिए यहां पे बहुत सूक्ष्म वर्णन है, ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। अर्जुन के लिए यज्ञ कुंड क्या है, अभी अर्जुन वहां यज्ञ करेगा क्या, वो यज्ञ कुंड बनाएगा उसमें आहुति देगा, नहीं। उसका यज्ञ कुंड क्या है, उसका यज्ञ कुंड है कौरवों का सेना। जो कौरवों की सेना है वो उसके लिए यज्ञ कुंड है। अब यज्ञ कुंड में क्या आहुति दी जाती है, तो अर्जुन के लिए आहुति क्या है, अर्जुन के बाण, अर्जुन के बाण के द्वारा अभी कौरवों की सेना जब मारी जाएगी तो उससे विष्णु प्रसन्न होंगे। ये है यज्ञ। तो इसलिए इसी तरीके से हर व्यक्ति के लिए एक यज्ञ होता है, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो अभी अर्जुन के लिए यज्ञ कैसा है, यज्ञ कुंड है कौरवों की सेना, और आहुति क्या है, यहां से अर्जुन के बाण। अर्जुन जैसे जैसे बाण मारता जाएगा, आहुति देता जाएगा, भगवान विष्णु जो है प्रसन्न होते जाएंगे। क्लियर। अभी ब्रह्मचारी कोई होता है, जो ब्रह्मचारी व्रत का पालन करता है, उसके लिए क्या है, तो उसके लिए जो यज्ञ कुंड है, यानी कि जो यज्ञ कुंड है, वो क्या है, कथा सुनना और दर्शन करना भगवान का, और इस तरीके से भगवान के धाम जाना, और उसमें आहुति किस चीज की दी जाती है, वेद वाणी यानी कि भगवान के शब्दों को सुनना, वो जो है उसमें आहुति दी जाती है। ठीक है। एक गृहस्थ व्यक्ति, एक पुरुष व्यक्ति की बात की जा रही है यहां पे, एक जो गृहस्थ है उसके लिए यज्ञ कुंड क्या है, उसकी जो पत्नी है वो उसके लिए यज्ञ कुंड है, और उसके द्वारा वो अपने जब अपने वीर का उसमें वीर को डालता है, तो उसके द्वारा जो उच्च उच्च अच्छी संतान उत्पन्न होती है वो उसके लिए क्या है, वो उसके लिए यज्ञ है। अच्छी संतान को प्राप्त करना अपनी पत्नी के द्वारा, वो उसके लिए यज्ञ है। तो इसलिए हर व्यक्ति के लिए यज्ञ बताया गया है, और उसका रिजल्ट जो है वो क्या होना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना। यज्ञ क्यों किया जाता है, यज्ञ अर्थात कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधना, भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करो। और यज्ञ जो है नहीं कोई व्यक्ति करता है तो वो क्या कर रहा है, वो कर्म बंधन में फंसता है, लोकोयम कर्म बंधना, वो कर्म बंधन में फंस जाता है। तो गृहस्थ, ये इसका पुत्र पैदा हुआ तो ये भी मंदिर जाता है, अपने बच्चे को भी मंदिर लेके जाता है, हाँ, ये भी भगवान के बारे में सुनता है, अपने बच्चे को भी, तो इस तरीके से ये भी एक यज्ञ कर रहा है। कर्म कांड में क्या है, मैं, मेरा घर परिवार, मेरे बच्चे, लेकिन इस समय हाँ वो क्या सोचते हैं, कर्म कांड वाले, इस बार अच्छी फसल हो गई, चलो भगवान की भक्ति करते हैं, हाँ चलो हमें कोई पुत्र नहीं होगा, चलो भगवान की कुछ पूजा कर लेते, कुछ यज्ञ कर लेते तो पुत्र हो जाएगा। तो जो कर्म कांड वाले शुरू शुरू में इस तरीके से सोचते हैं, लेकिन जब वो यज्ञ करने का प्रयास करते हैं तो भक्तों के संपर्क में आते हैं, ब्राह्मणों के संपर्क में आते हैं, तो उनको पता चलता है कि इस संसार में सुख भोगने से अच्छा है कि स्वर्ग जाया जाए। वहां पे क्या है स्वर्ग में, वहां पे उम्र बहुत लंबी है, अमृत भी है, अमृत है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की उम्र जो है 1000 साल है और उसने अमृत पी लिया तो उसकी उम्र 1 करोड़ साल हो जाती है, तो चलो वहां पे अमृत पीते हैं चल के, ऐसा करके वो सोचते हैं। वहां पे बहुत सारी अप्सराएं मिलेंगी, बहुत सारा सोमरस मिलेगा, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो वो ब्राह्मण को बुलाते हैं और ब्राह्मण से वो यज्ञ करने का बोलते हैं, भाई यज्ञ करो, ज्योतिष्ठोम यज्ञ करो, हाँ उससे क्या होगा, मैं स्वर्ग जाऊंगा। लेकिन जब वो स्वर्ग जाते हैं या स्वर्ग जाने के बारे में सोचते हैं तो देखते हैं, अरे मैं स्वर्ग जा रहा हूं और स्वर्ग जाने पर क्या हो रहा है, मैंने जो पुण्य किया वो खत्म हो रहे हैं, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, जैसे जैसे पुण्य खत्म हो जाएगा मुझे वापस आना पड़ेगा। जैसे कभी कभी फैमिली वाले प्लान करते हैं, चलो हम लोग शिमला चलते हैं, चलो हम लोग गोवा चलते हैं, और कुछ पैसे लेके जाते हैं, 50,000-1,00,000 रुपए लेके जाते हैं, और जैसे वो खत्म हो जाता है तो क्या करना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, फिर से नौकरी ज्वाइन करनी पड़ती है, फिर से पैसा कमाना पड़ता है। तो इस तरीके से पैसा खत्म तो वापस आना पड़ा, ऐसे ही हमारे पुण्य खत्म तो वापस पृथ्वी पे आना पड़ा, ऐसे ही पाप किया तो नरक जाना पड़ा। ये क्या है, ऊपर जाना नीचे जाना वापस आना, ऊपर जाना नीचे जाना वापस, ये सब क्या है, नहीं कुछ और बताओ मेरे को। तो बोलते हैं कि अगर कोई ज्ञान का सहारा लेता है, ज्ञान योग का सहारा लेता है तो मुक्ति को प्राप्त करता है। ज्ञान योग, ज्ञान योग मतलब भगवान के बारे में जानने का प्रयास करना, ज्ञान के द्वारा, वेदों के द्वारा, कई सारे वेदों का अध्ययन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, पुराणों का अध्ययन करना, भगवान के बारे में जानने का प्रयास करना, उसको ज्ञान योग बोला जाता है। उस ज्ञान योग के द्वारा व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। शंकराचार्य कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जननम, बार बार जन्म लेना पड़ता है, पुनरपि मरणम, मरना पड़ता है, बार बार माता के गर्भ में शयन करना पड़ता है। हाँ, इससे अच्छा है कि भगवान का नाम जप करना चाहिए व्यक्ति को। तो ज्ञान के द्वारा वो सोचने का प्रयास, वो सोचने लगता है ज्ञान के द्वारा, क्या, अरे मैं बार बार कर रहा हूं, मुझे फिर भी ये जो ताप है वो मुझे क्यों सता रहे हैं,
अब ये शरीर मुझे मिल रहा है, इस शरीर में देखो अगर मैं सुबह ब्रश नहीं करूंगा तो मुंह से गंध आएगी, अगर मैं नहाऊंगा नहीं तो पूरे शरीर से गंध आएगी, मल मूत्र विसर्जित करते रहना पड़ता है, सारे जो नौ द्वार हैं शरीर में उन सबसे गंदगी निकलती रहती है, इस शरीर में कितना सारा क्लेश है, कभी डेंगू हो जाता है, कभी कोरोना हो जाता है, कभी हैजा हो जाता है, कभी स्वाइन फ्लू, कभी ये कभी वो, ये सब चलता रहता है। इससे अच्छा है कि ज्ञान योग का सहारा लो और इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर लो, यहां से बाहर निकल जाओ इस ब्रह्मांड से और भगवान में जाके मर्ज हो जाओ, शांति को प्राप्त करो। तो जब कोई व्यक्ति इस तरीके से ज्ञान योग का सहारा लेता है और अपने लक्ष्य में पास भी हो जाता है तो क्या होता है, वो जीव जो आत्मा है वो यहां से निकल के आध्यात्मिक जगत नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वो भक्ति नहीं की है। जो भक्ति करते हैं वही आध्यात्मिक जगत पहुंच पाते हैं। तो चूंकि उसने भक्ति नहीं किया है तो वो वहां पे जाके रह तो सकता है, लेकिन क्या होगा, चूंकि आत्मा क्रियाशील है, कुछ ना कुछ करते रहना चाहती है, वहां पे कुछ करने को होता नहीं है। आप भगवान के धाम जाएंगे तो भगवान की सेवा करने को मिलेगी, आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप भगवान के धाम नहीं पहुंचे, बीच में अटक गए, तो वहां पे कुछ करने को है नहीं। इसलिए क्या होता है, वो ज्यादा दिन वहां पे रह नहीं पाता और वो वापस आ जाता है। जब वो वापस आता है तो फिर से वो परम सत्य के बारे में जानने का प्रयास करता है, बोलता अरे परम सत्य तो भगवान श्री कृष्ण है, पुरुषोत्तम है, इसलिए वो दो अन्य रास्तों को चुनता है, या तो ये अष्टांग योग को चुनता है या वो भक्ति योग को चुनता है, और इस प्रकार अंत में वो भगवान को प्राप्त करता है। तो ये वास्तव में योग जो है मैंने सारांश रूप में आपको बताया। सबसे पहले क्या बताया, याद कीजिए, सबसे पहले नास्तिक लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते, छोड़ दीजिए उनको। आस्तिक लोगों में कर्मकांडी होते हैं, कर्मकांडी मतलब ये करूं तो ये मिलेगा, ये करूं तो ये मिलेगा, कुछ करने तभी करते हैं जब उनको कुछ मिलने वाला होता है। फिर कर्मयोगी जो अपने कार्यों को, कार्यों के रिजल्ट को भगवान को अर्पित कर देते हैं, कर्मयोगी या बुद्धियोगी उनको बोला जाता है। उसके बाद आते हैं ये ज्ञान योगी जो जानने का प्रयास करते हैं हाँ कि इस संसार से बाहर कैसे निकला जाए, हाँ वो ज्ञान योगी। लेकिन ये लोग ज्ञान योगी जो हैं ये बाहर निकल नहीं पाते पूर्ण रूप से, और ये ब्रह्म ज्योति में मिलते हैं और वहां से फिर से वापस आ जाते हैं। फिर इनके पास दो रास्ते हैं, अष्टांग योग। अष्टांग योग हम लोग पढ़ेंगे, छठा चैप्टर अष्टांग योग है, तो वहां पे पढ़ेंगे अष्टांग योग क्या होता है, और या फिर भक्ति योग। चलिए अब यहां पे हम स्लाइड से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे नीचे लिखा हुआ है पशु जीवन, यानी नास्तिक लोग। नास्तिक लोगों से अच्छा क्या है, कर्मकांड, जिसमें हम देवताओं या भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन अपनी इच्छाएं रखते हैं। फिर उसके आगे है सकाम कर्मयोग। हमने केवल कर्मयोग की बात किया, सकाम कर्मयोग और निष्काम कर्मयोग में छोटा सा अंतर है। सकाम कर्मयोग में व्यक्ति अपने कर्म से आसक्त रहता है, लेकिन निष्काम कर्मयोग में व्यक्ति कर्म से आसक्त नहीं रहता, ठीक है। उसके ऊपर उससे अच्छा क्या है, ज्ञान योग, पर यहां करने का कुछ भी नहीं रहता, कोई कार्य नहीं रहता। और उसके ऊपर है अष्टांग योग, और उससे भी अच्छा है भक्ति योग। अष्टांग योग में हम जानते हैं कि क्या करना है, और भक्ति योग में हम वो करते हैं जो करना है। हम धीरे धीरे जब भगवद गीता को आगे बढ़ेंगे तो हमें ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अभी मोटा मोटा आप समझ लीजिए, ये योग श्रेणी है, इसको योगा लेटर बोलते हैं। ये मैं आप लोग बोले तो मैं आपको भेज भी दूंगा। पशु जीवन से अच्छा कर्मकांड, कर्मकांड से अच्छा सकाम कर्मयोग, उससे अच्छा निष्काम कर्मयोग, उससे अच्छा ज्ञान योग, ज्ञान योग से अच्छा अष्टांग योग और भक्ति योग। कुछ डाउट हो इसमें तो पूछिए अभी, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। हाँ हाँ भेज देंगे, भेज देंगे। यस कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड, चलिए आप लोग बहुत समझदार हैं, तुरंत समझ जाते हैं। अभी बस यही समझ लेना है, आप अभी से भक्ति योग कर सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से लाइन से जा सकते हैं। या तो आप लिफ्ट में चढ़ जाइए, सीधा फोर्थ फ्लोर पर पहुंच जाइए, नहीं तो सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी जाइए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे जाना चाहते हैं। भक्ति योग जो है लिफ्ट है, हाँ सीढ़ियां चढ़ने का भी ऑप्शन है ना, पशु जीवन, कर्मकांड, सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग। आना लेकिन फोर्थ फ्लोर पे ही है,
जो फ्लोर है, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है फोर्थ फ्लोर, फोर्थ फ्लोर पे पहुंचना है, सीढ़ी से फोर्थ फ्लोर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन लिफ्ट भी है, आप चाहो तो लिफ्ट में डायरेक्ट जाओ, एक मिनट के अंदर आप ऊपर पहुंच जाएंगे फोर्थ फ्लोर पर, और नहीं तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के आइए। हाँ जी पूछिए। हाँ भक्ति योग के बाद भगवान मिल जाते हैं, ये प्रश्न है आपका। हाँ भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66 नंबर श्लोक में तो यही बोलते हैं, 65 और 66 नंबर श्लोक में यही बोलते हैं, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैसे सत्यम ते प्रति जाने प्रियो, उसमें मेरे मुझ में अपने मन को लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो, इस तरह तुम मेरे पास आओगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, सारे धर्मों का परित्याग कर दो, मेरी शरण ले लो, मेरी भक्ति करो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, तुमने जितने भी पाप किए मैं सबको छोड़ दूंगा, अब सबको माफ कर दूंगा, डरो मत। तो भक्तियों के द्वारा भगवान प्राप्त हो जाएंगे, भगवान भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होंगे, और किसी योग के द्वारा प्राप्त होने वाले नहीं है एक्चुअली। नहीं हम लोग कहां पे स्टैंड करते हैं, मोस्टली कर्मकांड में, थोड़ा सा ज्ञान होता है तो हम कर्मयोग में चले जाते हैं, भगवान के लिए करने लगते हैं, फल भगवान को अर्पित करना। जैसे मान लीजिए कोई जॉब करता है, 1,00,000 रुपए सैलरी है तो 10,000 रुपए मंदिर में दान कर देता है, तो एक हिसाब से कर्मयोग है कि फल को भगवान को अर्पित कर रहा है वो। जी कोई और प्रश्न है किसी का, अभी काफी कवर करना है। धर्मेंद्र प्रभु बोलिए। भक्ति किसकी, सच्ची किसकी है भक्ति, ऐसा देखो प्रभु जी, ये जो भक्ति है ये किसी अन्य फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है, आप समझिए, किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती। भक्ति भगवान की पूर्ण रूप से भगवान के लिए है, भगवान की है, उसमें कोई और फैक्टर ही नहीं है, सच्ची झूठी खराब छोटी बड़ी कुछ नहीं, भक्ति मतलब भक्ति। अभी स्टैंडर्ड क्या है, जब भगवान राम के लिए ब्रिज बनाना है लंका, तो हनुमान जी बड़े बड़े पर्वत उठा उठा के ला रहे हैं और समुद्र में डाल रहे हैं, और एक गिलहरी भी जो है वो गिलहरी क्या कर रही है, पानी में जा रही है, पानी में अपने को गीला कर रही है, फिर रेती पे आके अपने आप को उलटती पलटती है, और फिर जाके फिर से पानी में जाती है, उस रेती को डाल देती जाके। तो गिलहरी भी भक्ति कर रही है और हनुमान जी भी भक्ति कर रहे हैं, इसमें छोटी बड़ी भक्ति नहीं है किसी की, दोनों को सेम फल मिलेगा, क्योंकि दोनों भगवान का कार्य कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। कोई और प्रश्न, मोहित गोमती माता जी कोई प्रश्न था, भक्ति योग इन सबसे परे है, बुद्धि योग निष्काम कर्म, बुद्धि योग निष्काम कर्म योग, बुद्धि योग मतलब निष्काम कर्म योग। मोहित हाँ हाँ प्रभु जी बोलिए। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, इसका मैं एक्सप्लेन करता हूं, निष्काम कर्मयोग और भक्ति योग में क्या अंतर है। निष्काम कर्मयोग में व्यक्ति कर्म अपना ही करता है, जैसे आप नौकरी करते हैं, है ना, तो नौकरी ही करेगा लेकिन उसके फल को भगवान को अर्पित करेगा। लेकिन भक्ति योग में व्यक्ति वही करेगा जो भगवान उसे चाहते करना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, भगवान का दर्शन करना, भगवान के लिए झाड़ू लगाना, भगवान के लिए पोछा मारना, भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान को भोग लगाना, भगवान का प्रसाद ही खाना, ये भक्ति योग है। निष्काम कर्म योग में वो काम अपना करेगा, नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो अपना करेगा लेकिन फल भगवान को अर्पित करेगा। ये अंतर है थोड़ा सा, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हाँ जी, हाँ ठीक है। आप अभी आप उसको देख मतलब ध्यान दे रहे हैं तो सुनिए, ये केवल एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है। जैसे सूर्य को हम लोग तीन तरीके से समझ सकते हैं। हम अगर अंदर रूम के बैठे हुए हैं, बाहर प्रकाश है, हम जान जाते हैं कि सूर्य निकल आया है, वो है सूर्य का प्रकाश। तो ज्ञान योग में सूर्य के बारे में, सूर्य एक व्यक्ति है ऐसा करके हमें पता नहीं रहता। ज्ञान योग में वैसे ही है, वो सोचते हैं भगवान एक लाइट है, ब्रह्म ज्योति, उसको वो भगवान मान लेते हैं। अब दूसरा है अष्टांग योग। अष्टांग योग की तुलना सूर्य ग्रह से की गई है। तो हम लोग जब सूर्य को देखते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है, एक लाल लाल गोला दिखाई देता है, आग वाला गोला दिखाई दे रहा है सूर्य ग्रह। तो अष्टांग योग में व्यक्ति को परमात्मा की अनुभूति होती है। परमात्मा कौन है, जो हर व्यक्ति के हृदय में, हर जीव के हृदय में बैठे हुए हैं, उनको परमात्मा बोला जाता है। लेकिन भक्ति योग जो है, भक्ति योग में वो जानता है कि कृष्ण जो है वही परमात्मा है और उनके शरीर से ही प्रकाश निकलता है, उसको ब्रह्म ज्योति बोला जाता है। वैसे ही जैसे कि सूर्य ग्रह जो हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन सूर्य ग्रह के अलावा एक सूर्य व्यक्ति भी है जिनका नाम विवस्वान है। वो व्यक्ति ही उनका जो ग्रह है वो पूरा गोला आर्क के गोले के समान दिखाई देता है और उसके कारण ही पूरे संसार में प्रकाश दिखाई देता है। तो ये एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल दिया जा सकता है, ये तीन है, ज्ञान योग मतलब ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करना, अष्टांग योग मतलब परमात्मा को प्राप्त करना, और भक्ति योग मतलब भगवान को प्राप्त करना। ये बहुत जरूरी है समझना। जैसे हम जब बहुत दूर से देखते हैं किसी पर्वत को देखते हैं, तो पर्वत हमको क्या दिखाई देता है, ऐसे ही दिखाई देता है कि कुछ है, भूरा भूरा सा पर्वत है। जब हम थोड़ा और पास जाते हैं तब हमें दिखाई देता है कि वहां पे पेड़ लगे हुए हैं, और जब हम बिल्कुल पड़ोस पहुंच जाते हैं तो हमें पता चलता है तो बहुत बड़ा है और उसके बारे में हम बिल्कुल अच्छे से डिटेल जान पाते हैं। तो वैसे ही ज्ञान योगी जो है वो भगवान के बारे में उसको बहुत थोड़ा नॉलेज है, उसको क्या लगता है कि प्रकाश ही भगवान है। वास्तव में क्या है, भगवान के शरीर से बहुत प्रकाश निकलता है, तो कुछ लोग उस प्रकाश के कारण भगवान को देख नहीं पाते, वो सोच लेते हैं यही भगवान है, जो प्रकाश है ना यही भगवान है, इसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। और लोग जो निराकारवादी होते हैं, जो भगवान में मिल जाना चाहते हैं, जो भगवान को, जिनका भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो क्या सोचते हैं, यही ब्रह्म ज्योति ही भगवान है और मुझे भगवान से एकाकार हो जाना है, भगवान में विलीन हो जाना है, वो ये सोचते हैं। दूसरे उनसे अच्छे लोग वो अष्टांग योग का सहारा लेते हैं और वो जानते हैं कि भगवान परमात्मा रूप में कण कण में विद्यमान है। लेकिन और जो तीसरे व्यक्ति हैं, जो भक्ति योगी हैं, वो जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, वही कृष्ण परमात्मा रूप में हर कण कण में विद्यमान है और वही कृष्ण जो है ब्रह्म ज्योति के रूप में उनके ही शरीर से प्रकाश निकल रहा है, उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। ये इसको भक्ति योग मतलब सुप्रीम है, उसको सारा नॉलेज है। भले कोई कोई अनपढ़ भी क्यों नहीं है, अगर वो भक्ति योग कर रहा है ना तो उन सबसे अच्छा है, वो अष्टांग योग से अच्छा है, ज्ञान योग से अच्छा है, कर्म योग से अच्छा है, कर्म कांडियों से भी अच्छा है, वो सबसे अच्छा है। भले वो अज्ञानी है लेकिन वो सही रास्ते पर जा रहा है। हाँ ज्ञान योगी थे, यस यस ज्ञान योगी थे, हाँ हाँ बिल्कुल सही एग्जांपल। हाँ हाँ जी। बिल्कुल, ये जो योगा लेडर है, हम इसको बाद में कभी चर्चा कर सकते हैं, अभी हम थोड़ा थर्ड चैप्टर को आगे बढ़ते हैं, टाइम बढ़ रहा है ना। चलिए हाँ, तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सीढ़ी बेस्ट है, सॉरी स्वचालित सीढ़ी यानी कि लिफ्ट जो है वो ज्यादा अच्छी है उसकी तुलना के जो सीढ़ियां हैं। तो इस तरीके से कोई भी व्यक्ति साधना भक्ति के द्वारा शुद्ध भक्त बन सकता है। इस संसार में देखा जाता है कभी कभी लोग अर्जुन की तरह जब परेशान हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। अभी कुछ ही समय पहले की बात है, IIT हैदराबाद जो है वहां के 3 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। उनको भौतिक ज्ञान बहुत ज्यादा है लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जो गीता का होना चाहिए वो उनके पास नहीं है। आत्महत्या करने के बाद व्यक्ति भूत बनता है, प्रेत बनता है। जैसे कोई कंपनी में कोई नौकरी कर रहा है तो कंपनी उसको एक कार देती है कि भाई ये कार जो है कंपनी के काम के लिए तुम यूज करो। अभी कंपनी के काम के लिए वो कार यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी कार को वो बीच पे लेके जाए, घूमने के लिए लेके जाए, तो कंपनी ने उसके लिए वो कार नहीं दी है, उसको किसके, कंपनी के कार्य के लिए दी है। दूसरा, हो सकता है कोई कहे नहीं मैं तो इस कंपनी की गाड़ी को मैं अपने घर पे खड़ा रखूंगा, मैं कहीं लेके नहीं जाऊंगा, वो भी सही नहीं है, दोनों ही सही नहीं है। और इससे भी ज्यादा खराब यह है कि कोई क्रिकेट का बैट लेके उस गाड़ी को मारना शुरू कर, पीटना शुरू कर दे, तोड़ना शुरू कर दे, तो वो और ज्यादा डेंजरस है। हमको प्रकृति के द्वारा ये मनुष्य का शरीर मिला है, इस शरीर को वेस्ट नहीं करना है, भूत बन के, घोड़ा बन के, गधा बन के क्या करना है, इसका यूज करना है भगवान की भक्ति में, भगवान की भक्ति में इसको लगाना है और इसका सदुपयोग करना है। आत्महत्या करने से व्यक्ति को भूत बनना पड़ता है। आगे अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मैं वापिस स्टेशन पर उतरा तो एक ऑटो वाला बोला महाराज चलना है, मैंने कहा चलो मंदिर चलना है करके मैं ऑटो में बैठ गया। ऑटो वाला बोला और महाराज कैसे हो, बढ़िया हम तो बढ़िया ही, हम तो खुशी रहते प्रसन्न नहीं रहते। ऑटो वाला बोला महाराज हम भी आपकी तरह बनना चाहते हैं। ठीक है लेकिन अभी क्या आपका स्थिति क्या है, बोले अरे हमारी तो शादी हो चुकी है लेकिन हम मंदिर में रहना चाहते हैं। क्यों मंदिर में रहना चाहते हैं, बोले अरे महाराज 4,000 रुपया सेल आता है और 8,000 रुपया खर्चा है। तो हमने उससे पूछा अच्छा तो आप कैसे खर्चा करते कैसे हो, इतना खर्चा हो रहा है, बोले देखो महाराज 1,000 रुपया तो सिगरेट में चला जाता है, 2,000 रुपया तो शराब में चला जाता है। अभी ऐसा अगर कोई खर्चा कर रहा है, देखिए पाप कर्म करने के लिए बहुत पैसा खर्चा होता है, पाप कर्म अगर कोई करना चाहता है तो बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा उसको, कितनी महंगी शराब है, कितनी महंगी सिगरेट आती है, कितने महंगे ये जो बार वगैरह है इन सब में कितना महंगा है। लेकिन भक्ति करना बहुत ईजी लेकिन कोई करना नहीं चाहता। मैंने उसे कहा इतना सब पैसा तुम पाप कर्म में लगा रहे हो, इससे अच्छा है ये लो माला और इसमें जप करना शुरू करो भगवान का, ये बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ो, शराब पीना छोड़ दो, इस तरीके से पाप से बचो। पहले तो आश्रम को तुम नहीं ज्वाइन कर सकते, ब्रह्मचारी आश्रम अभी नहीं आ सकते क्योंकि तुमने गृहस्थ जीवन चूज कर लिया है। अभी गृहस्थ जीवन चूज करके तुमको क्या करना है, उनका ख्याल रखना है, गृहस्थ का जो तुम्हारी जिम्मेदारी अभी गृहस्थ जीवन में जिम्मेदारी है उसको निभाना है। अब उनको भी माला दो, उनको भी जप करो, पत्नी को भी माला दो, बच्चों को भी माला दो। तो क्या सोचते हैं, अरे हम अगर प्रभु जी की तरह हम भी अगर आश्रम में रहने लगे हम भी बहुत खुश हो जाएंगे। अगर ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सारी इंद्र तृप्ति की इच्छाएं हैं और वो इस तरीके से कभी मान लो अगर रहने भी लगा आश्रम में तो मन को तो साथ लेके आएगा और मन जो है बहुत सारी ट्रिक्स खेलता है। मन कैसे ट्रिक खेलता है, एक सेकंड में मन चेंज होता है। आप लोगों को पता नहीं इसका एक्सपीरियंस है कि नहीं, जब शमशान जाते हैं किसी व्यक्ति को जलाने के लिए, किसी दाह संस्कार में जाते हैं तो वहां पे क्या बोलते हैं आपस में लोग, सब बेकार है यार, कि कुछ भी कमा लो कुछ भी कर लो सब बेकार, यहाँ पे आके मर जाना है, ये आग लगा देंगे घर वाले। हाँ? अरे देखो मैं कल रात में उससे 9 बजे बात कर रहा था, तब तक सब कुछ सही था, अचानक रात में क्या हो गया, रात तो रात मर गया। हम भी कभी भी मर सकते हैं, अब तो कुछ नहीं करेंगे, अब तो केवल भगवान का नाम भजन करेंगे बस, और जैसे ही शमशान से बाहर निकलते हैं बस सारा वैराग्य खत्म,
उसका कितना पैसा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, अभी वसीयत में क्या लिखा है, वो सारी बातें करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से नहीं हो सकता। निष्काम कर्म योग में मतलब इस कर्म योग को फॉलो करते करते कोई व्यक्ति धीरे 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 एडवांस होएगा, उसकी धीरे धीरे प्रगति होगी। कृत्रिम रूप से नहीं छोड़ सकते। अर्जुन अगर मान लो छोड़ के वो जंगल में जाके भीख मांगना शुरू भी कर देता तो अगर कोई मान लो उसको भीख नहीं देता तो तुरंत तलवार निकाल के मार देता उसको, क्योंकि कृत्रिम रूप से उसने किया। अंदर से संन्यास नहीं हुआ है, बाहर से सन्यासी बन रहा है। तो जब कोई पुण्य आत्मा जिसने बहुत पुण्य किया है वो मरता है तो स्वर्ग जाता है। स्वर्ग जाना मतलब वो स्वर्ग के लिए आहुति है उसकी, और स्वर्ग से उसको वापस भेजा जाता है। तो कैसे आता है, वो बादलों के द्वारा आता है। तो इस तरीके से बादलों के रूप में उसकी आहुति होती है, और बादल कैसे बारिश के रूप में भूमि में आते हैं, पृथ्वी पे आते हैं, वो पृथ्वी के लिए आहुति हो जाते हैं। और पृथ्वी पे वो जब बारिश के रूप में वो आत्मा आती है तो पेड़ पौधों में चली जाती है, और वो पेड़ पौधे जो है एक पुरुष के शरीर में जाते हैं और वहां पे वीर्य बनते हैं, और वो वीर्य जो है पत्नी के गर्भ में जाता है, और वहां से जन्म होता है एक पुत्र का और पुत्री का, और इस प्रकार से वो पुत्र पुत्री जो है वो आगे यज्ञ करते हैं, और इस तरीके से यज्ञ का जो चक्र है वो चलता रहता है। फिर से मैं यज्ञ के चक्र को एक्सप्लेन करता हूं। कोई व्यक्ति यहां पे यज्ञ करता है, यज्ञ करते 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 पुण्यात्मा वो जाता है स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में वो स्वर्गलोक से जब वो अपने भोग को भोग लेता है वापस बादलों के द्वारा, बारिश के द्वारा वो पृथ्वी वापस आता है। पृथ्वी पर वो किसी प्लांट में जाता है, किसी पौधों में जाता है, पौधों के द्वारा वो मनुष्य के वीर में परिवर्तित होता है, और मनुष्य के वीर से वो किसी स्त्री के गर्भ में जाके वहां से पुत्र संतान जो है उत्पन्न होती है, और वो फिर यज्ञ करता है। इस तरीके से ये चक्र जो है चलता रहता है। भगवान इस चक्र को अनुमोदन करते हैं और कहते हैं कि यह चक्र जो है चलते रहना चाहिए। जो व्यक्ति 16 नंबर का श्लोक, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वो निश्चय ही पाप में जीवन जीता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रिय तुष्टि के लिए ही व्यर्थ जी रहा है, उसको मर जाना चाहिए। भगवान बोल रहे श्री भगवान वाच। तो क्षत्रिय हो इसलिए क्षत्रिय होने के कारण तुम्हारा जो है तुम्हारे लिए कर्तव्य अलग है, तुम्हारी ड्यूटी अलग है। अगर तुम उस ड्यूटी को नहीं निभाओगे तो तुम उस चक्र का पालन नहीं कर रहे हो, और जो उस चक्र का पालन करता है वो आत्मा राम होता है। जो चक्र का पालन नहीं करता वो दुखों को प्राप्त करता है। तो देखिए सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है, अगर कोई व्यक्ति थोड़ा भी दिमाग लगाए, हम लोग चावल खरीदने जाते हैं तो हमें पैसा हमसे चार्ज किया जाता, दाल खरीदने जाते हैं, पानी खरीदने जाते हैं तो पैसा चार्ज किया जाता है। तो ये जो हम भगवान के द्वारा हमको सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, जो बारिश हो रही है, जो हवा हमको फ्री में मिल रही है, उसके लिए चार्ज नहीं है कुछ? हमें उसको चार्ज उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं देना चाहिए क्या? हम उसके अगेंस्ट में भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट में यज्ञ नहीं कर सकते? एक बच्ची अपने घर पे आई कॉलेज स्कूल से, घर पे उसको सैंडविच रखा हुआ मिला, वो खाने लगी। मैंने उससे पूछा सैंडविच कहां से आया, बोली नहीं मेरे को भूख लगी थी सैंडविच आ गया। ऐसा नहीं है, उसकी माँ ने सैंडविच की व्यवस्था वहां पे की थी। ठीक वैसे ही भगवान ने हमारी जरूरतों के हिसाब से हवा पानी सारी चीजों की व्यवस्था की हुई है, और भगवान क्या चाहते हैं कि हम उनके लिए यज्ञ करें, तो हमें यज्ञ करना चाहिए। एक बच्चा एयरपोर्ट पे जा रहा था, एयरपोर्ट पे ऑटोमेटिक ओपन होने वाले गेट होते हैं, हाँ, तो क्या सोचता है मैं आया इसलिए गेट ओपन हो गया? नहीं, वहां पे एक सिस्टम बनाया हुआ है, उस सिस्टम के द्वारा वो गेट ओपन हो रहा है। तो जो जड़ पदार्थ हैं इनसे बारिश नहीं हो सकती। आप कैसे सोचते हैं हर बार 1 जून को केरल में मानसून आ जाता है, कहां से आ जाता है भाई? ये व्यवस्था की गई है। हर बार जून जुलाई अगस्त में बारिश बहुत होती है, व्यवस्था है ये। हर रोज सुबह 6 बजे सूरज निकल आता है, दिस इज अ सिस्टम, भगवान ने उसको बनाया है, और भगवान हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम यज्ञ करें उसके लिए। वो भी यज्ञ उनके लिए नहीं, हम अपने भले के लिए करें, क्योंकि अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे लोकोयम कर्म बंधना, हम कर्म के बंधन में फंस जाएंगे। तो हर देवता को एक डिपार्टमेंट दिया हुआ है, इंद्रदेव को डिपार्टमेंट दिया है बारिश का, सूर्य देव को दिया है प्रकाश का, पवन देव को दिया है वायु का, और ये सारे के सारे देवता मेरे अंडर में कार्य कर रहे हैं। भगवान बोलते हैं मेरा जो ऑर्डर है वही सब कुछ है, चाहे सूरज हो, चाहे पानी हो, चाहे वायु हो, सब कुछ मेरे अंडर में चल रहा है। मैं उसको डेमी गॉड्स यानी देवताओं के द्वारा मैनेज करता हूं। तो कर्म कांडी जो है वो जब यज्ञ करते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं, और देवता जब प्रसन्न होते हैं तो बारिश होती है और अन्य अन्य जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो उनको मिलती हैं। तो ये कर्मकांड है। अभी भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कर्मकांड छोड़ो, तुम एक कर्मयोगी बनो, एक आदर्श कर्मयोगी बनो। ये मैंने सर्कल के बारे में जो बताया था, यज्ञ, यज्ञ के द्वारा बादल, बादल से अन्न, अन्न से जीव, जीव से परमेश्वर को प्राप्त करें, परमेश्वर से वेद, और उनसे निहित कर्म, और निहित कर्म ही यज्ञ। यज्ञ मतलब अपनी ड्यूटीज को फॉलो करना, नियत कर्म करना ही यज्ञ। आदर्श कर्म योगी। कृष्ण ने अभी तक समझाया कि अगर किसी को कर्म फल की इच्छा है तो वह इच्छाओं के रहते हुए भी धार्मिक पद्धति से कर्म कर सकता है, लेकिन अब कृष्ण समझाएंगे कि यदि कोई इच्छाओं से मुक्त है तब भी उसे दूसरों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कर्म करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट। अभी जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया है, जो जान गया है भगवान के साथ संबंध क्या है मेरा, उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है। जो जान गया है कि कृष्ण जो है मेरे मालिक हैं, मैं उनका दास हूं, और जब मैं उनकी सेवा करूंगा तभी मैं प्रसन्न रह सकता हूं, उसके हृदय में कोई तृष्णा नहीं है, उसके हृदय में केवल कृष्णा है। वो नहीं चाहता कि उसको बहुत अच्छी पोस्ट मिले, बहुत सुंदर युवतियां मिले, बहुत सारा कंट्रोल मिले, वो इन सबसे ऊपर उठ गया है। उसे संसार की, इंद्र तृप्ति की कोई चीज नहीं चाहिए, उसको दुनियादारी की चीजों में कोई आनंद नहीं आ रहा है, वो आत्म तृप्त है, स्वयं में संतुष्ट रहता है, पूर्णतया संतुष्ट है। तो जो तृप्ति है, जैसे इंद्र तृप्ति जो है, इंद्र तृप्ति बाहर की चीजों में नहीं मिलती, व्यक्ति अंदर से तृप्त होता है। जैसे आग लगी हुई है, आप उसमें घी डालेंगे तो क्या होगा, आग बढ़ेगी। इंद्र तृप्ति की इच्छा जो है वो वैसे ही है। इंद्र तृप्ति के साधन अगर आप उसमें डाल रहे हैं, आप सोच रहे हैं ये मैं कर लूंगा तो धीरे धीरे मैं इससे वैराग्य हो जाएंगे, नहीं होगा वैराग्य। जितना ज्यादा आप उस इंद्र तृप्ति को करने का प्रयास करेंगे, आप इंद्र तृप्ति में और फंसते चले जाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो इन सबसे ऊपर उठ गया है, भगवान बोलते हैं उसके लिए कोई निहित कर्म अनिवार्य नहीं है, वो कुछ नहीं भी करेगा तो भी चलेगा। भौतिक कार्यों में उसे कोई रुचि नहीं है, ऐसे कार्य को करने में उसको कोई उद्देश्य भी नहीं है, कोई लाभ भी नहीं है, और ऐसा कार्य नहीं करने का कोई कारण भी नहीं है। वो किसी दूसरे व्यक्ति पे डिपेंडेंट भी नहीं रहता, ना किसी देवता पे डिपेंडेंट रहता है। तो पिछले श्लोक से संबंध, आध्यात्मिक बुद्धि वाला व्यक्ति अपने निहित कर्म फल की इच्छा नहीं करता, लेकिन उनके फल से अनासक्त रहते हुए उदाहरण स्थापित करने के लिए कर्म करता है, दूसरों को सिखाने के लिए कर्म करता है। अभी मान लीजिए किसी के हृदय में ना तो काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, तो क्या होगा, वो चाहता है मैं भगवान की सेवा करूं, भगवान के धाम जाऊं, टेंशन खत्म। लेकिन वो संसार में रह रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने नियत कर्मों को करना पड़ेगा, जिससे वो दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित करे। अगर वो नहीं करेगा तो दूसरे लोग क्या करते हैं, दूसरे लोग जो है ना वो बड़े लोगों का को फॉलो करते हैं। सायत प्रमाणम यद्यदाचरित श्रेष्ठ तत्त देवे तरोजना, सायत प्रमाणम कुरते लोकस तदनुवर्तते। सामान्य व्यक्ति जो है महापुरुषों के अनुचरण का अनुसरण करते हैं, जैसे महान महान लोग करते हैं वैसे ही ये सामान्य लोग जो है वही कार्य करते हैं। तो उदाहरण दिया जाता है जनक महाराज का। जनक महाराज जो भगवान राम के ससुर, माता सीता के पिता हैं, उनका एक नाम है विदेह। विदेह का अर्थ है वो देह से परे हैं, देह वाली स्थिति में नहीं है, बल्कि विदेह वो उच्च स्थिति में है, वो उस स्तर पे नहीं, आत्मा के स्तर पे जीवन जी रहे हैं। अब उनके लिए कुछ भी सिद्ध करने के लिए नहीं है, वो ऑलरेडी सिद्ध हैं, लेकिन फिर भी वो एक राजा का रोल निभा रहे हैं। क्यों? सामान्य लोगों को शिक्षा देने के लिए। जनक महाराज अपनी पुत्री का विवाह करवा रहे हैं, हाँ, कई सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, जबकि वो इन सब, उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। क्यों? दूसरों को उदाहरण देने के लिए। सेम पांडवों के साथ भी है। युधिष्ठिर महाराज भगवान कह रहे हैं राजा बनो तो राजा बन रहे, भगवान कह रहे युद्ध करो तो युद्ध कर रहे हैं, भगवान कह रहे जंगल जाओ तो जंगल चले गए भगवान की इच्छा को समझ के। तो इस तरीके से जो व्यक्ति जीता है वही जीता है वास्तव में। देखिए इस संसार में तीन तरीके की भावनाएं होती हैं जीव के अंदर। आपने अनम्यूट कर दिया है पुतुल जी, पुतुल झा तो इस संसार में तीन भावनाएं होती हैं व्यक्ति के अंदर, काम क्रोध लोभ। लोभ क्या है? प्रोप्रिएटरशिप, मैं स्वामी हूं, मैं इस जमीन का स्वामी हूं, मतलब अधिकार जमाने की जो स्वामित्व की भावना है उसको बोला जाता है लोभ। और कामना क्या है? एंजॉय करने की, भोग भोगने की जो इच्छा है उसको काम बोला जाता है। और साथ साथ में नियंत्रणकर्ता बनने की, ये चीजें मेरे नियंत्रण में होनी चाहिए, वो क्रोध के अनुसार है, वो चाहता है कि मेरे अंडर में सब लोग रहें। तो विश्वामित्र वो मेनका के चक्कर में फंस गए, काम। दुर्वासा ऋषि क्रोधी हो गए अम्बरीश महाराज पे। हम लोगों ने जाना था कि कैसे अम्बरीश महाराज जो है उनके ऊपर, उनको वो भगवान की भक्ति करते हुए उन्होंने एकादशी व्रत का पालन किया था और पारण के समय दुर्वासा ऋषि आ गए, तो दुर्वासा ऋषि को भी पारण कराना चाहते थे लेकिन दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए चले गए। और लौट के आए तो देखते हैं कि अम्बरीश महाराज ने पानी पी लिया है, तुलसी दल ग्रहण कर लिया है। उनको बहुत क्रोध आ गया उनके ऊपर और अम्बरीश महाराज को मारने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। अंत में क्या हुआ, सुदर्शन चक्र भगवान का जो कि अम्बरीश महाराज की रक्षा कर रहा था वो दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया और दुर्वासा ऋषि जहां जहां भाग रहे हैं और वो सुदर्शन चक्र पीछे पीछे उनको दौड़ा रहा है, पूरे बॉडी को उनके जला रहा है। बाद में लौट के अम्बरीश महाराज के चरणों पर गिर पड़ते हैं और अम्बरीश महाराज से प्रार्थना करते हैं कि मुझे माफ कर दो। अम्बरीश महाराज उनको माफ कर देते हैं। तो क्रोध और एक दक्ष, वो लोभ इतना था कि मेरे सब मेरे अंडर में रहना चाहिए, शंकर जी मेरे अंडर में रहना चाहिए, इसलिए वो दक्ष जो है शंकर जी के प्रति अपराध कर लेता है। लेकिन महाराज जनक वो इन तीनों चीजों को जीते हुए हैं, काम क्रोध लोभ से वो परे हैं। तो देखिए ये जो काम है, काम मतलब केवल आप यही मत समझिए जो स्त्री पुरुष के बीच में जो काम भावना होती वही काम है, काम मतलब ऐसी प्रतिकूल इच्छाएं जो कि संसार में वर्जित हैं उनके लिए हट करना। जैसे एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे रावण है तो रावण सीता को प्राप्त करना चाहता है। वास्तव में उदाहरण दिया शास्त्रों में ऐसा बताया कि किसी दूसरे की स्त्री जो है वो माता के समान है, लेकिन ये क्या कर रहा है, वो जहां जहां उसको सुंदर स्त्रियां मिलती हैं वो अपने पास लेके आना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या मर मिटना चाहता है और अंत में वही मर मिटा। ऐसे दुर्योधन, उसको लोभ है। अर्जुन कह रहे हैं, युधिष्ठिर कह रहे हैं भाई मुझे केवल पांच गांव दे दो, हम लोग एक एक गांव के राजा बन जाएंगे, तुम अपना करो कोई दिक्कत नहीं। और दुर्योधन कह, हम क्यों दे दें पांच गांव, पांच गांव क्यों दे दें, नहीं देंगे, एक भी गांव नहीं देंगे, युद्ध करो। तो लोभ है उसको, वो चाहता है पूरे विश्व पे मेरा राज्य होना चाहिए। जनक महाराज इन सबसे परे हैं, इसीलिए वो एग्जाम्पल देने के लिए, फिर भी वो एग्जाम्पल देने के लिए वो जीवन जी रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं, नियत कर्मों को कर रहे हैं। भगवान कहते हैं उनका तो छोड़ो, मैं खुद भी यही करता हूं, मैं इस पृथ्वी पे आया हुआ हूं, मेरी भी पत्नियां हैं, मेरे भी बच्चे, मैं भी उनका पालन पोषण कर रहा हूं। क्यों? 23-24 नंबर श्लोक में बोलते हैं, यदि मैं नियत कर्मों को नहीं करूंगा तो हे पार्थ सारे मनुष्य मेरा ही अनुगमन करेंगे और विनाश की ओर सब लोग चले जाएंगे, मैं अवांछित संतानों को उत्पन्न करने का कारण बन जाऊंगा। अर्जुन ने बोला था ना अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, भगवान कहते नहीं, अवांछित संतानें मेरे ना करने से उत्पन्न होंगी, तुम्हारे से कुछ होने वाला नहीं। इसलिए 25 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, कहते हैं सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारता कुर्यद् विद्वांस तथा सक्तश्च कीर्षि लोक संग्रहम। अज्ञानी जन जो है वो फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, ऐसे ही विद्वान लोगों को चाहिए कि उचित लोगों को उचित रास्ते पर ले जाने के लिए कार्य करते रहें। जो विद्वान लोग हैं उनको एग्जाम्पल देने के लिए कार्य करते रहना चाहिए। अभी भगवान सतर्क करते हैं। अब देखिए एक यहाँ पे हम छोटा सा और एक चीज लेना चाहेंगे, ये आइंस्टीन करके एक वैज्ञानिक हुए, बड़े वैज्ञानिक हुए, बहुत दिमाग था उनके पास, उन्होंने बहुत सारी खोजें की। दिमाग किसने दिया उनको? कृष्ण ने उनको दिमाग दिया, भगवान ने उनको। कोई बहुत बड़ा सिंगर है उसकी जो जो गायन की क्षमता है वो किसके द्वारा उसको मिली हुई है? भगवान ने उसको प्रदान किया। कोई बहुत बड़ा मुक्केबाज है, कोई बहुत बड़ा चैंपियन है किसी चीज का, किसके द्वारा कृपा? भगवान के द्वारा कृपा प्राप्त हुई है। कोई रेस बहुत अच्छी करता है, किसके द्वारा? भगवान ने उसको कृपा दी हुई है। तो भगवान उसको कैपेबिलिटी देते हैं, भगवान उसको शक्ति देते हैं, हाँ? लेकिन लोग क्या समझते हैं? मैं कर रहा हूं। कौन क्या सोचते हैं? मैं कर रहा हूं, मैं इतना महान हूं। इसलिए भगवान सतर्क करते हैं। 27 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अज्ञानी पुरुष क्या सोचता है? मैं कर रहा हूं, कर्ता अहम, मैं सिंगर हूं, मैं जो हूं रेसर हूं, रेस करने वाला व्यक्ति हूं, मैं जो हूं, मैं जो है इतना विद्वान हूं। लेकिन कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। किसके द्वारा करवा रहे हैं? प्रकृति क्रियमाणानी, प्रकृति के द्वारा भगवान करा रहे हैं। और भगवान उस शक्ति को छीन लेते हैं। अभी आपको पता होगा, एक सुशील कुमार करके एक रेसलर है, बहुत बड़े, बहुत हीरो थे, पूरे देश के हीरो थे, हाँ, वो जाके ओलंपिक में भी मेडल प्राप्त करके आए हैं। और अभी तक उनके साथ भगवान की कृपा थी, भगवान ने कृपा को वापस ले लिया, अभी वो जेल में है, उनको जेल हो गई। तो प्रकृति क्रियमाणानि, वो क्या सोच रहे थे? मैं हूं, मैं, मैंने किया। नहीं, भगवान की कृपा से मिला है। हर चीज को हमें यही समझ के ग्रहण करना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, अपने आप को मेरे शरणागत कर दो, मेरे पूर्ण ज्ञान में रहते हुए, बिना किसी प्रॉफिट की इच्छा करते हुए, बिना किसी प्रोपरेटरशिप की इच्छा करते हुए, क्लेम करते हुए, आलस्य रहित होकर युद्ध करो। मई सर्वाणि कर्माणि, श्लोक संख्या 30, मई सर्वाणि कर्माणि सन्यस्यध्यात्म चेतसा निरासी निर्ममो भूत्वा युद्ध स्वाविगत ज्वरा। सारे कार्यों को मुझे में समर्पित कर दो, पूर्ण ज्ञान से युक्त हो जाओ, लाभ की आकांक्षा को छोड़ दो, कोई स्वामित्व का दावा नहीं, और आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। आलस मत दिखाओ, युद्ध करो। तो अज्ञानी लोग जो होते हैं वो उल्टा सोचते हैं। तो ये जो श्लोक है 3.30, ये भगवद गीता के पर्पस को बताता है कि भगवद गीता का पर्पस क्या है। भगवान चाहते हैं भगवान के लिए कर्म किया जाए, कर्म अपने ही नियत कर्मों को करना है, भगवान के लिए किया जाए। तो इसलिए भगवान कहते हैं, मेरे जो मैं ऑर्डर कर रहा हूं उसका पालन करो, निर्ममो, कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, निराशी, कोई झूठी जो है इच्छाएं नहीं हो, कोई झूठी आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, और विगत ज्वरा, तुम्हें जो है आलसी भी नहीं बनना है। जैसे मिलिट्री में क्या होता है, सुबह सुबह जगा दिया जाता है, चलो प्रैक्टिस करने चलो, ऐसे ही गुरुकुल होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सुबह सुबह जगा दिया जाता है, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। ऐसे ही हर व्यक्ति को अपने नियत कर्मों का पालन करना चाहिए और उनका जो रिजल्ट है वो भगवान को ऑफर कर देना चाहिए। हनुमान जी से पूछा, तुम कौन हो? मैं भगवान राम का दूत हूं, मैं भगवान राम का सेवक हूं। क्या सेवा है तुम्हारी? मैं माता सीता की सर्च कर रहा हूं, उनको खोज रहा हूं। अच्छा, अगर तुम्हें सीता माता का पता चल गया तो? भगवान की कृपा से पता चला, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। करोड़ों बंदर थे, भगवान ने हनुमान जी को अपनी अंगूठी दिया, बोला तुम सीता को दे देना। भगवान जानते कौन सीता को ढूंढेगा, भले ही वो सबको सेवा में लगाए, लेकिन उनको मालूम है हनुमान जी उनको जो है मिलेंगे सीता जी को, और हनुमान जी को उन्होंने वो अंगूठी प्रदान किया। तो जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हो रहा है, वो भगवान की कृपा से हो रहा है। भगवान की कृपा से ही हम कुछ भी करने में संभव हैं। हम टॉपर भी बन रहे हैं, हम फेल भी हो रहे हैं, वो सब भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें भी उसी तरीके से विचार रखना चाहिए। क्या मैं जो कर रहा हूं, जो भगवान ने मुझसे कहा है, मैं वही कर रहा हूं, भगवान की इच्छा से ही कर रहा हूं, मैं उनका दास हूं, मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाऊंगा, पूरी शक्ति से करूंगा, पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा, और जो रिजल्ट मिलेगा वो भगवान को ही अर्पित करूंगा। वो रिजल्ट पे मेरा हक नहीं है। हम लोग अपना हक बहुत देखते हैं, कभी कभी हम लोग बात करते हैं, देखना आज इंडिया जीतेगी, और लास्ट में इंडिया जीत जाती, देखा मैंने बोला था इंडिया। अरे भाई, तुम्हारे बोलने से इंडिया नहीं जीती है, वहां पे 11 लोग खेल किए हैं, अच्छे से खेलें तब जाके इंडिया जीती है। लोग इतना आसक्त रहते हैं अपने से। भगवान कहते हैं, परम सत्य को जानने वाला व्यक्ति, 28-29 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, तो इसलिए 30 नंबर श्लोक में भगवान इस प्रकार से बोलते हैं, मई सर्वाणि करिमाणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। अब भगवान बोलते हैं कि जो मेरे उपदेशों को फॉलो करता है, मुच्यन्ते तेऽपि कर्म भी, वो क्या करता है, वो सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। और जो मेरे फल मेरे जो मैंने जो उपदेश दिए उनको फॉलो नहीं करता, वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। सर्वज्ञान विमूढास्तान विद्धि नष्टान चेतसः, जो उपदेश का पालन नहीं करता उसको समस्त ज्ञान से रहित मानना चाहिए, दिग्भ्रमित मानना चाहिए और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट मानना चाहिए। तो अर्जुन पूछता है, मैं तो क्षत्रिय हूं फिर भी मेरा मन क्यों मेरे को बोल रहा है कि मैं ब्राह्मण वाला कार्य करूं, क्या कारण है ऐसा? मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे जबरदस्ती पकड़ के मुझसे गलत काम कराना चाहता है, गलत कार्य कराना चाहता है। अर्जुन अर्जुन वाच, श्लोक संख्या 36, अथ केन प्रयुक्तोयम् पापम चरति पुरुषा अनिच्छन पिवाश्नेया बलादेव नियोजिता। बल के द्वारा नियोजित किया जाता है पाप करने के लिए। कभी कभी होता है हम नहीं चाहते हैं पाप करना, फिर भी हमसे पाप हो जाता है। क्यों? क्योंकि बलपूर्वक हमको जो है लगा। कौन लगाता है बलपूर्वक? अर्जुन का प्रश्न वही है, कौन बलपूर्वक हमको लगा देता है? भगवान उसका आंसर देते हैं, काम एषा क्रोध एषा रजोगुणा समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन मिहि वैरिणम। काम, काम जो है वो क्या करता है, वो हमारे बर्भो बंधन का कारण है। हम नहीं चाहते हैं फिर भी हमें काम के कारण क्या है, फंसना पड़ता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, बच्चा बोलता है मम्मी मुझे बाहर जाना है, हा? अरे छोटा बच्चा है, बाहर जाएगा एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए माँ उसको बोलती है नहीं तुम बाहर नहीं जाओगे, मम्मी मुझे ये खाना है। माँ जानती है कि तुम ये अगर खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, इसलिए मम्मा ने नहीं तुम्हें नहीं खाना है, मुझे मोबाइल देखना है, मुझे आग को पकड़ना है, तो माँ मना करती है। तो ऐसे स्टार्टिंग में हमें जो हैं कुछ पाबंदियां लगानी बहुत जरूरी हैं। अगर वो पाबंदियां हम नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, हम फंस जाएंगे, हम अपने आहित कर लेंगे अपना। इसलिए माँ जो है वो जानती है, वो बच्चे को इनसे दूर रखती। लेकिन एक समय आता है जब बच्चा बड़ा हो जाता है, वो मोबाइल यूज करना जानता है, आग को यूज करना जानता है, बाहर निकल सकता है, तो फिर उसको छूट दी जाती है। लेकिन शुरू शुरू में उसको छूट नहीं दी जाती। तो ठीक वैसे ही जो लोग जो पापी लोग होते हैं वो क्या करना चाहते हैं, वो पाप करना चाहते हैं, वो इन कार्यों को करना चाहते हैं जिनको मना किया गया है, वो उनको कार्य को करना चाहते हैं। तो अभी काम देखिए, केवल मैंने फिर से बताया स्त्री पुरुष वाला काम वही काम नहीं है, हाँ, लेकिन यहां पे इस बच्चे में भी काम देखा जा रहा है। उसकी इच्छा है बाहर जाने की, घूमने की, आग को छूने की, लेकिन उसके लिए सही नहीं है। दुर्योधन को भी काम है, उन्हें 5 गांव भी नहीं दूंगा, उसकी भी इच्छा है। तो मन जो है वो हमको कृष्ण के अगेंस्ट में लेके जाता है। अर्जुन कृष्ण बोल रहे हैं युद्ध करो, मन अर्जुन का क्या बोला, नहीं मैं युद्ध नहीं करना। तो इसलिए भगवान बोलते हैं ये जो काम है ये बहुत खतरनाक है और ये 3 जगह रहता है, धूमेनावृते वनहेर्यत अदर्शो मलेन चा यथोल्बेनावृतो गर्भस्थ तथा तेने दमावृतम। इसके 3 तरीके का आवरण है, जैसे आग के अंदर धुएं के अंदर आग होती है, जैसे मिरर के अंदर जो है दर्पण, धूल के अंदर दर्पण होता है, जैसे गर्भ के अंदर शिशु होता है, वैसे ही काम जो है 3 तरीके से ढका हुआ होता है। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं काम कभी भी संतुष्ट नहीं होता। डिजायर्स जो है वो आग की समान है, इसमें अगर आप घी डालेंगे सोचेंगे चलो एक बार इंद्रिय तृप्ति कर लेता हूं फिर खत्म हो जाएगा, नहीं होगी। जितना घी डालेंगे आग उतना ही फैलेगी। आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानी नो नित्य वैरिणा, ये ज्ञानियों का नित्य वैरी है, काम रूपेण कौन्तेया दुष्पूरेणा नलेन चा, ये आग के समान हमेशा जलता ही रहता है। और इसकी 3 जगह है जहां ये रहता है, इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अस्याधिष्ठान मुच्यते एतर विमोहयत्तेषा ज्ञानमावृत देहिनम। 3 जगह रहता है, कहां कहां रहता है, इंद्रियाणि मनो बुद्धिर, इंद्रियों में रहता है, मन में रहता है और बुद्धि में रहता है। और इसके द्वारा ये काम जो है ये जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक लेता है और उसको मोहित कर देता है। अभी आपको पता चल गया शत्रु रहता कहां है, तो शत्रु को हराया कैसे जाए, भगवान उसके बारे में ही बताते हैं। अब अजामिल के बारे में थोड़ा सुन लेते हैं। ये अजामिल जो आप देख रहे हैं सामने, धोती पहना हुआ है, वाइट धोती, ये बेचारा एक अच्छा सा शांत सिंपल सा ब्राह्मण था। उसके पिताजी की आज्ञा थी, भाई जाओ जंगल से पुष्प लेके आ जाओ, तो मैं कुछ और भी सामग्री मंगाई जिससे मैं यज्ञ कर सकूं, पूजा कर सकूं भगवान की। ये जंगल जाता है तो जंगल में देखता है एक शूद्र व्यक्ति जो है वो एक वैश्या को का आलिंगन कर रहा है, वैश्या को चूम रहा है। हाँ, ये सब तो ये सब जब देखता है ये सीधा साधा ब्राह्मण, तो ये जो है परेशान हो जाता है। ये उस दृश्य के कारण इसके इसका मन जो है वो भी कामुक हो जाता है, वो भी चाहने लगता है। तो ये क्या करता है, कुछ दिनों के बाद उस स्त्री को अपने घर ले आता है, उसको अपनी पत्नी बना लेता है, और जो पहले उसकी पत्नी थी उसको और अपने माता पिता को निकाल देता है, घर से बाहर कर देता है। और अंत समय में भगवान का नाम लेता है, फिर बच जाता है, भगवान के धाम जाता है, अलग है। लेकिन ये एक सीन देखने से इसकी हालत जब ऐसी हो सकती है, और हम लोग जो इस संसार में अभी जी रहे हैं, जहाँ इतने सारे बिलबोर्ड हैं, इतनी सारी मूवीज निकल रही हैं, इतने सारे मोबाइल एप्लीकेशंस आ रही हैं, इतनी सारे लाइव हाँ हम लोग देख रहे हैं, जिसमें लोग इतना कामुकता से व्यवहार करते हैं एक दूसरे से, कितनी सारी चीजें चल रही हैं, व्यक्ति कैसे अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा। उस व्यक्ति ने, अजामिल ने, केवल एक सीन देखा और उसके कारण उसकी हालत ऐसी हो गई, उसको बहुत दुख भोगना पड़ा। हाँ, लेकिन अभी आजकल के समय में तो क्या चल रहा है, हजारों हजारों सीन ऐसे हो रहे हैं। तो उसको क्या करना चाहिए था, उसको उस स्थान से चले जाना चाहिए था। जितना उस दृश्य का वो ध्यान करेगा, उतना ज्यादा उसको जो है इच्छाएं और परेशान करेंगी। ऐसे ही हमको भी क्या करना चाहिए, हमको भी विषय वस्तुओं से अपनी इंद्रियों को हटा लेना चाहिए। अगर हम विषय वस्तुओं से इंद्रियों को नहीं हटाएंगे तो हम विक्टिम बन जाएंगे, हम फंस जाएंगे। तो अभी जो मॉडर्न लाइफ चल रही है उसमें लोग मनमाने ढंग से जीते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, अवैध संबंध रखते हैं, और इस तरीके से कुत्ते और बिल्लियों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमको इंसेंस ग्रेटिफिकेशन से दूर रहना चाहिए और भगवान के आदेश को पालन करना चाहिए। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जब हम अपने आप को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, अपने शरीर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उसको काम बोला जाता है, और जब हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो उसको प्रेम बोला जाता है। तो काम से बचो और प्रेम करो, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो तीन चीजें ध्यान दीजिए, हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। भगवान और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कर्मकांड यानी यज्ञ करना चाहिए, फिर कर्मयोग की तरफ, निष्काम कर्मयोग की तरफ बढ़ना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारा चित्त शुद्धि होगा और हम जीवन में सुख को प्राप्त कर पाएंगे। और तीसरी चीज, जब काम क्रोध लोभ जब चला जाएगा तब हम शांत रह पाएंगे इस जीवन में, और वही जो व्यक्ति शांत रह पाता है वही व्यक्ति जो है सुख प्राप्त कर सकता है। अशांतम कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति के लिए संसार में सुख है ही नहीं। इसलिए भगवान 43 नंबर श्लोक में बोलते हैं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मानम आत्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। हे अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रिय मन और बुद्धि से परे जानो, और मन को आध्यात्मिक बुद्धि में लगाओ, यानी कि मेरी भक्ति में लगाओ। उस तरीके से जब तुम स्थिर कर दोगे तो आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीत लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने तीसरा चैप्टर यहाँ पे फिनिश किया, और चौथा अध्याय हम लोग जो है अगले क्लास में